आज जो कुछ हम लोगों ने सुबह श्री अरविंद से पढ़ा, आपने देखा होगा कि वास्तव में कितना सरल है, कितना डायरेक्ट है। कोई उसमें घुमा फिरा के कुछ कहने वाली बात नहीं, सीधी साधी बात कही है। लेकिन फिर भी ये भी साथ में आता है कि कहीं कहीं पर बुद्धि चकरा जाती है। अच्छा, ऐसे क्यों होता है? अगर सूक्ष्मता से देखें तो ये होता है कि हम सब सीमाओं में खड़े होकर असीम को पुकारते हैं या उन्हें समझने का प्रयास करते हैं, और जब तक असीम हमारी सीमाओं की परिधि में आ रहे हैं तब तक हमें बहुत अच्छा लगता है। सच्चाई की बात है, सत्य निष्ठा की बात है। और जब वो हमारी सीमा की परिधि के बाहर हो जाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है और समझ नहीं आता है। ये भी बात है, क्योंकि हम चाहते हैं हमारी बुद्धि के दायरे में आए और भगवान चाहते हैं हमारी बुद्धि विस्तृत हो। दोनों के बीच टकराव ये होता है कि श्री अरविंद के साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये सब जगह होती है। बंगाल में कम्युनिस्टों को समझ नहीं आता कि वो श्री अरविंद के साथ क्या करें, उनको किस कैटेगरी में डालें। जब वो विश्व बंधुत्व इत्यादि की बात करते हैं तो लगता है ये तो कम्युनिज्म का भी आइडियल है, लेकिन जब वो गॉड की बात करते हैं तो कहते हैं ये तो बिल्कुल अलग बात हो गई। ट्रेडिशनलिस्ट को भी समझ नहीं आता कि श्री अरविंद को किस कैटेगरी में डालें। एक और तो वो वेद उपनिषद गीता की बात करते हैं और उसके वेद रहस्य, इतनी अद्भुत पुस्तक लिखी है, पुराने ग्रंथों का इतना सुंदर, रामायण महाभारत उस पर जो उनकी थोड़ी बहुत टीकाएं हैं, कालिदास, इतना अद्भुत है। पास्ट का सत्य बाहर जब निकालते हैं सुंदर ढंग से, किंतु जब वो बाहरी आचार विचार व्यवहार की बात करते हैं तो लगता है महाकाली का रूप आ गया है सामने और खटाक खटाक खटाक, तो फिर समझ नहीं आता है, क्योंकि हम बाहरी फॉर्म से चिपके रहते हैं, स्पिरिट को भूल जाते हैं। और श्री अरविंद हमें समझा रहे कि फॉर्म तो बदलेगा, बाहरी फॉर्म बदलेगा, उसमें क्या है। पुराने समय के ऋषि धोती पहनते थे, तो अब कोई आवश्यक नहीं कि आधुनिक ऋषि भी धोती ही पहने, वो जीन्स भी पहन सकते हैं। ये फॉर्म से जो हम चिपकते हैं, इसलिए आप देखें जितने सीरियल हैं सब में वो अभी थोड़े से मॉडिफाइड होके आने लगे हैं। एक आता है निजी छतरी वाला, इट्स एन अटेम्प्ट या कुछ सिनेमा की, ये इनर चीज है, ये बाहर के किसी आप वेशभूषा त्रिपुंड तिलक से नहीं जान सकते, क्योंकि ये एक बिल्कुल अंदर की चीज है। और उसी प्रकार मॉडर्निस्ट को भी समस्या होती है। वो एक और देखते हैं श्री अरविंद इतने लिबरल हैं, इंडिविजुअलिटी पर इतना जोर दे रहे हैं, हाँ देखो कितने मॉडर्न हैं, कई वेस्टर्न इससे आकर्षित होते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि मॉडर्न सभ्यता को वो एक ऐसी गाड़ी की तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं जो क्रैश करने वाली है, और यूरोप के बारे में जो श्री अरविंद लिखते हैं लाइक ए सिंकिंग शिप जो आज नहीं तो कल डिस्ट्रॉय होने वाला है, चाइल्ड शेल डिस्ट्रॉय, तो फिर वो सकपका जाते हैं कि क्या कह रहे हैं। सच तो ये है कि श्री अरविंद न ट्रेडिशनल है ना मॉडर्न है, वे भविष्यवेता है, और वो जो भविष्य देख रहे हैं उसको मानव मन ने कहीं ना कहीं कंसीव करने का, क्योंकि बीज पड़ा हुआ है, प्रयास किया है, लेकिन वो उसको पूर्ण नहीं कर पाया, वो आकृति अपूर्ण है। यही चीज जगन्नाथ के रथ में बता रहे हैं कि प्रयास किया है, क्योंकि स्वप्न है सबके अंदर, हम सब चाहते हैं कि एक आदर्श समाज हो, लेकिन वो क्या है। जब इसकी बात आती है तो हम घूम फिर कर, हमारे पास दो करेंसी है, एक हमारी पास्ट करेंसी और एक जो मॉडर्न करेंसी है, और दोनों के ही आधार पर हम भविष्य का अनुमान नहीं लगा सकते। समस्या हमारी बस इतनी सी है, लेकिन हम ना पास्ट छोड़ना चाह रहे हैं, ना हम मॉडर्निटी छोड़ना चाह रहे हैं, जो मॉडर्न से उनकी बात कर रहा हूं। वास्तव में हमें छोड़ना कुछ नहीं है, सत्य को उसके पकड़ना है। दोनों के अंदर सत्य है, अद्भुत सत्य है। श्री अरविंद जब पास्ट का सत्य निकालते हैं तो पूरा वेद रहस्य, इट्स अमेजिंग। लेकिन हम बाहरी रूप को पकड़ते हैं, अंदर के सत्य को भूल जाते हैं। समस्या ये होती है, हर चीज के पीछे एक सत्य है और एक उसका फॉर्म है। फॉर्म बनेगा, रिजिड होगा, टूटेगा, नए फॉर्म बनेंगे, नए इंस्टीट्यूशंस बनेंगे जो फिर से उस सत्य को एम्बॉडी करने के लिए प्रयास करेंगे। वो कहां तक जाएंगे ये डिपेंड करेगा मनुष्य के ऊपर, उनकी एक बर्थ होगी, ग्रोथ होगी, फिर या तो वो चेंज होके ट्रांसफॉर्म होंगे या वो डिजेनरेट होंगे, ये नियम है। एक वेद अलंकार जी आए थे, ये पुस्तक है नारायण प्रसाद की, लाइफ इन श्योरबिंदो आश्रम, तो वहां पर जब उन्होंने आश्रम को देखा तो वो लिखते हैं बहुत, उन्होंने वेद का बहुत गहरा अध्ययन किया था। कहते हैं ना जाने कब से मेरे मन में ये कल्पना थी कि कभी तो फिर से ये वैदिक युग आए। यहां आश्रम में आके पहली बार मुझे प्रतीत हुआ कि हाँ वह वैदिक युग लौट आया है। अब बाहर से अगर आप देखें तो सेम्बलेंस आपको नहीं मिलेगी। आश्रम में यहां तक नहीं होता कि कोई मेडिटेशन की क्लास ले आपकी, पर अगर आप अंदर के ट्रुथ को देखें तो आपको प्रतीत होगा कि हाँ ये वो सत्य है जो प्रकट हो रहा है। उन्होंने इस चीज को महसूस किया। वहीं पर ट्रेडिशनल आते हैं, उनको समस्या होती है, वो वहां तक ठीक है, मेडिटेशन वगैरह करना वहां तक ठीक रहता है। एक और भी स्टोरी इसी तरह की, एक साधु महाराज आए तो उनके अनुयायी भी बड़े इंप्रेस किए, तो बड़ा अच्छा ध्यान करते हैं, माता जी के पास भी उन्होंने साथ में ध्यान किया, तो लोगों ने कहा बड़ा सिंसियर है, वेरी नाइस पर्सन, बहुत एकदम ध्याननिष्ठ। तो माता जी से कहा आपके क्या इंप्रेशन है, नाइस पर्सन, ठीक 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 है। मतलब उस जब माँ ऐसा कहें तो ये कि मेरे काम के लिए विशेष उपयोगी नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने हिसाब से ठीक ठाक कर रहा है। तो लोगों को समझ नहीं आया। शाम को वो प्लेग्राउंड गए, सबने कहा प्लेग्राउंड में भी मेडिटेशन होता है, गए प्लेग्राउंड में। अब प्लेग्राउंड में जब मेडिटेशन हुआ तो जब सब मेडिटेशन कर रहे थे, जब आंख खुली आधे घंटे बाद सब अपना अपना उठे, तो देखा वो चुपचाप एक कोने में खड़े हुए। तो कहा अरे क्या हो गया? कहते बड़ा मुश्किल है यहाँ तो मेडिटेशन करना, हुआ ही नहीं मुझसे। क्यों? बोला यहाँ पर सारी लड़की लड़के सब एक साथ बैठे हैं, लड़कियाँ ऐसे से कब आराम से बैठी हुई हैं, ऐसे में कैसे मेडिटेशन करूँ? अब देखिए कहाँ पर आदमी आके अटक जाता है, एक अपनी सीमा। तो हम सब जब भगवान को सीमित करते हैं, वास्तव में हम अपनी ही सीमा निर्धारित कर रहे हैं। शेरविंद की एक लाइन है सावित्री में, टाइंग हर डाउन, इट इज आवर सेल्व्स वी टाई। हम जब भगवान को सीमित कर देते हैं, अप्रोप्रिएट कर देते हैं, भगवान किसी अगर हम ये समझते हैं कि हम जान गए, हम सब कुछ जानते हैं और बस भगवान को कन्फर्म ही करना है जो हम जानते हैं, तो भगवान की आवश्यकता क्या है, गुरु की आवश्यकता क्या है? अक्सर लोग आते हैं, इवन एज ए साइकियाट्रिस्ट मैं इस चीज़ को महसूस कर अनुभव किया है, कभी कभी लोग आते हैं कहते हैं आप जरा हमारे बच्चे को समझाइए, क्यों क्या प्रॉब्लम है, बहुत नॉटी है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता, दिन भर खेलता रहता है, आप उसे समझाइए। तो मैंने कहा भैया इस तरह का समझाना मेरा काम नहीं है, आप ये चाह रहे हो कि मैं उसको समझाऊं या आप ये चाह रहे हो कि मैं आपका स्पोक्स पर्सन बनूं? मुझे ट्रुथ का स्पोक्स पर्सन बनना है, किसी व्यक्ति का स्पोक्स पर्सन नहीं बनना है। फिर कभी कभी मुझे कहना पड़ता है कि आप बैठ जाइए थोड़ी देर, आप एक्चुअली मन ये होता है कि आपको समझाने की जरूरत है, बच्चे को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बस वो कहें जो हमें पसंद है, और जहां तक वो ये सब कहते हैं जो हमें पसंद है हमें बहुत अच्छा लगता है, पर जब माँ शेरविंद कुछ ऐसी बात कहते हैं जो बिल्कुल नई है, नवीन है, तो हम सीखने की बजाय बंद कर लेते हैं अपने आप को कि नहीं नहीं वो सब ठीक है, वो बहुत या तो आगे की बात है या वो अलग चीज है, पर ये सब सही है। तो अब हमें शेरविंद को एक नई दृष्टि से, एक विनम्रता के साथ, इस भाव के साथ कि हे प्रभु हमें कुछ नहीं मालूम, हमारे मन में जितने भी पूर्वाग्रह पूर्व धारणाएं हैं अपने बारे में, समाज के बारे में, सत्य के बारे में, सब तो अज्ञान जनित धारणाएं हैं, बचपन से लोगों ने सिखा दिया, हमने मान लिया, पर सत्य क्या है हम नहीं जानते, हमें आप सिखाइए। तब देखिए कि वो उंगली पकड़ के चलना सिखाएंगे, जैसे जब अज्ञान होता है तो माँ यशोदा उंगली पकड़ के कृष्ण को चलना सिखाती है, जब ज्ञान आता है तो देखते हैं कि ये तो गेम उल्टा चल रहा था, उंगली किसी और ने पकड़ी थी, चलना कोई और सीख रहा था। तो ये इस भाव से जब हम लोग पढ़े और आगे बढ़े, द रियल नेम ऑफ द चेरियट ऑफ जगन्नाथ। अब देखिए जगन्नाथ रथ यात्रा कब से नहीं होती है, लोग जाते हैं, टीवी पर होता है, बड़े बड़े पंडित उसके बारे में आपको व्याख्यान देंगे, कभी हमने सोचा था कि जगन्नाथ का रथ वास्तव में क्या है? ये देखिए दृष्टि है श्री अरविंद की, द रियल नेम ऑफ द चेरियट ऑफ जगन्नाथ इज नॉट सोसाइटी बट कम्यून। हम लोगों को दोनों के अंदर अंतर ही नहीं मालूम। अब शेरविंद बताएंगे क्या इसका रियल रहस्य है। नॉट ए लूज ह्यूमन एसोसिएशन विद डाइवर्स टेंडेंसीज और मेयरली ए क्राउड बट एन अनफेटर्ड इनडिविजिबल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बात है। एक सोसाइटी ये भी होती है समाज जहां लूजली सब आप बाहरी रूप से सब यूनाइटेड है, किसकी तरह, संतरे की तरह, अंदर से सब डिवाइडेड है। दूसरा होता है ना खरबूजा, ये संतरे वाला समाज, बाहर से सब यूनाइटेड है। जैसे कोई आप देखिए कॉमन फंक्शन हुआ सब पहुंच जाएंगे, श्राद्ध में खाना है या फला फला तिथि, ये सब पहुंच जाएंगे, और अंदर से गाली गलौज ये सब चल रहा है। लूज ऑर्गेनाइजेशन है, डिविजिव टेंडेंसी से भरा हुआ है। दूसरी ओर एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है कम्यून। कम्यून क्या है देखिए डेफिनेशन, अनफेटर्ड, जिसके अंदर कोई बाहरी बंधन है ही नहीं, अनफेटर्ड, इंडिविजुअल को इतनी फ्रीडम है उसके अंदर, अनफेटर्ड, इंडिविजिबल, लेकिन वो विभक्त नहीं है। अब देखिए ये एक शब्द ही इतना अद्भुत है, कोई चेन नहीं है, कोई बंधन किसी ने नहीं डाला। आश्रम में देखिए ये चीज देखने को मिलती, कोई बंधन किसी पर नहीं है। यहां तक होता है कि कोई कोई लोग ज्वाइन करते हैं, कुछ समय बाद बोलते हैं हम नहीं काम करेंगे, कोई कुछ नहीं बोलता है, डाइनिंग रूम जाते हैं, खाना खाते हैं, सब कर रहे, अनफिटर्ड, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसा नहीं, अच्छा तुम ऐसा कर रहे हो, नहीं कोई नहीं, वो है, अब उसकी अपनी समस्या है। इनडिविजिबल, इनडिविजिबल क्यों है, क्योंकि केंद्र एक ही। अब देखिए यही चीज होती है ना सेंटर्स में भी, कम्यून में, चाहे बाहर से कितने मतभेद हो, एक चीज में तो सब यूनाइटेड है कि मां, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, इनडिविजिबल। द नॉस्टिक कम्युनिटी, अब देखिए एकदम सीधा जिसको कहते हैं ना मुद्दे पर आना, नॉस्टिक कम्युनिटी, इसी की बात मां करती है बाद में कि सुपरामेंटल लाइफ उसका नाम ही है नॉस्टिक कम्युनिटी, क्रिएटेड बाई डिलाइट एंड द यूनिफाइंग पावर ऑफ सेल्फ नॉलेज एंड डिवाइन नॉलेज, आनंद से, स्वेच्छा से। अभी क्या होता है, हम जिस समाज में जन्मे हमको उसको बिलोंग करना पड़ता है, अगर हम नहीं है तो हमें समाज से, अब तो समय बदल रहा है किंतु एक समय था जब बहिष्कृत कर दिया जाता था, निष्कासित कर दिया जाता था, निलंबित कर दिया जाता था। लेकिन सोचिए एक ऐसा समाज जहां स्वेच्छा से, डिलाइट से, आनंद से, आपसे कोई कह नहीं रहा है कि चलो 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 इस समाज को बिलोंग करो, आप अपने आनंद से जा रहे हैं, और उस आनंद के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, सेल्फ नॉलेज एंड डिवाइन नॉलेज। कौन सी सेल्फ नॉलेज, हम क्यों आए हैं, हम मां के शिशु हैं, ये एक प्रकार की सेल्फ नॉलेज है, बहुत सारी उसमें डिफरेंट वेज ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन होते हैं, एंड डिवाइन नॉलेज। सोसाइटी, समाज, ये शब्द में ही मीनिंग अर्थ है, ये संस्कृत की बड़ी अद्भुत बात है, इज द नेम गिवन टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट डिवाइस विच अलाउज ए ह्यूमन कलेक्टिविटी टू वर्क टूगेदर। बाई अंडरस्टैंडिंग द रूट ऑफ द वर्ड वी कैन ऑल्सो सीज इट्स मीनिंग। द सफिक्स सम मीन्स यूनाइटेड, द रूट अज सिग्निफाइज टू गो, टू रन, टू फाइट। थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम टूगेदर फॉर द सेक ऑफ वर्क एंड टू सेटिस्फाई देयर डिजायर्स। दे परस्यू न्यूमरस एम्स इन द सेम फील्ड। हु कैन कम फर्स्ट, हु कैन गेट टू द टॉप, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज स्ट्रगल एंड कॉम्पिटिशन, क्वेरल एंड फाइटिंग, नॉट ओनली अमंग देमसेल्स बट विद अदर सोसाइटीज एज वेल। ये तो रूट में ही बता दिया गया है समस्या, साथ आते हैं समाधातु सम, और किस लिए, अज कर्म करने के लिए, कॉमन वर्क के लिए, लेकिन आपस में कंपटीशन शुरू हो जाता है, सेम समाज के लोग हैं, सेम, आप देखिए सेम लक्ष्य को जा रहे हैं लेकिन आपस में कंपटीशन हो रहा है, सब जगह होता है, आश्रमों में होता है, ऑर्गेनाइजेशंस, सेक्स में होगा, मठों में होगा, मठाधीश कौन है, जहां आप सोसाइटी ह्यूमन माइंड ट्राई करता है फॉर्म करने की, ये समस्या होती है, स्टार्ट हो जाएगा कंपटीशन, इनफाइटिंग, क्वारल, और उसके परिणाम। टू ब्रिंग अबाउट ऑर्डर इन टू दिस chaos, ऑब्टेन हेल्प एंड सेटिस्फाई मेंटल टेंडेंसीज, वेरियस रिलेशंस एंड आइडियल्स आर established. द रिजल्ट इज समथिंग temporary, इनकम्प्लीट एंड अचीव्ड विद डिफिकल्टी. लोग इसलिए कि ये झगड़ा बहुत अधिक ना हो, बहुत ज्यादा ड्रामेटिक ना हो जाए, तो तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे रूल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, लॉज, बाई लॉज इत्यादि बनाते हैं ना, जिसे डिसऑर्डर तो है, कुछ नहीं कर सकते, परंतु एक ऑर्डर के सीमा के अंदर है. तो हर एक समाज में रिटेन अनरिटेन इस प्रकार के रूल्स हैं. आपको एक लिमिट के अंदर चीजें अलाउ की जाती हैं, उसके आगे आप करोगे तो वो रूल अप्लाई कर दिए जाएंगे. पुराने समय में रूल बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, आपको समाज से ही निकाला जा सकता था. अब रूल्स अलग प्रकार के हैं, क्योंकि हम लोग वेस्टर्न डेमोक्रेसी के युग में हैं, लेकिन वहां भी वही समस्या है. रूल रूल है, नाम बदल दिए गए हैं. दिस इज द इमेज ऑफ सोसाइटी ऑफ द लोअर एग्जिस्टेंस. The inferior society is based upon division. दिति की संतान. देखिए दैत्यों में प्रॉब्लम क्या होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपस में लड़ते रहते हैं. आप ये देखेंगे इवन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आपस में झगड़ा करते हैं, इवन जहां उनके सेम लक्ष्य होते हैं अलकायदा और आइसिल, आपस में दोनों. ये अलकायदा इतना भयभीत रहता है आइसिल से, दोनों सारे संसार में भय फैला रहे, दुर्गंध फैला रहे, लेकिन एक दूसरे के दुश्मन है. ये डिवीजन की सोसाइटी का यही परिणाम होता है. ये एक एक्सट्रीम चीज है तो हमें दिख रही है, लेकिन बाकी जगह इसी का माइल्डर वर्जन लोअर एग्जिस्टेंस में, और वो भी उजागर होता है. समाज बनेगा, फिर उसमें अलग अलग स्ट्रेटा हो जाएंगे, अमीर गरीब नाना प्रकार की, ये जात वो जात, डिवीजन पर बेस्ड है. The structure of the ideal society is entirely the opposite. तो ये तो हुआ संतरे वाला समाज. अब दूसरा जो समाज है इसका बिल्कुल अपोजिट है, खरबूजा. Unity is the foundation. There is a play of differentiation for the sake of multiform delight, not for division. Foundation unity है, एकत्व है. अंदर से सब एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन बाहर सब अपने अपने ढंग से जी रहे हैं, अभिव्यक्त कर रहे हैं उसी सत्य को. अब देखिए दूसरा है समाज है जहां बाहर से जुड़े हैं, एक दूसरे के उसमें नहीं जाएंगे तो लोग कितना, वो देखो आया नहीं था शादी ब्याह में, नहीं आया था इसमें, नहीं आया था, बहुत इसका वो होता है. चाहे अंदर से उसके अंदर स्नेह हो, गुडविल हो, सब कुछ हो, लेकिन असली समाज कौन सा है, आइडियल सोसाइटी, जहां अंदर से तो जुड़े हैं, फाउंडेशन यूनिटी है, लेकिन बाहर से प्ले ऑफ डिफरेंसिएशन है, ताकि हर व्यक्ति अपने स्वभाव और स्वधर्म को स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से अभिव्यक्त कर सके. ये पूरी फ्रीडम है, उसमें कोई कंपल्शन नहीं है, पर अंदर से जुड़े हैं. यूनिटी इज द फाउंडेशन, देयर इज अ प्ले ऑफ डिफरेंसिएशन फॉर द सेक ऑफ मल्टीफॉर्म डिलाइट नॉट फॉर डिविजन. क्योंकि यही सृष्टि की का सत्य है. सृष्टि का सत्य क्या है, यूनिटी. यूनिटी बैकग्राउंड में रहती है, डिफ्रेंसिएशन बाहर आता है. इसीलिए एको हम बहुश्यामी, एकम बीजम बहुधायत करोषि. प्लांट में भी देख लीजिए, रूट एक रहेगा लेकिन खूब सारे उसमें पत्ते भी, दो पत्ते अलग अलग रहेंगे. फिर स्पेसीज में देख लीजिए, जीनस में देख लीजिए, फैमिली में देख लीजिए, हर लेवल पर देख लीजिए, ह्यूमन लैंग्वेज में देख लीजिए, रूट साउंड्स सिमिलर होंगी लेकिन जो बाहर उसके एक्सप्रेशन होंगे अलग अलग होंगे. ये सत्य है, ये सत्य का आधार है. बैकग्राउंड में यूनिटी है. और अगर आप यूनिटी के बेसिस पर, इवन हमारे विज्ञान इसी बात को जानता है. आप देखिए कितने सारे एलिमेंट्स हैं, 108 या ऐसे कुछ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स आते हैं, पर उनके बेसिस पर अगर आप जाएं रूट में तो वही एटम, एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन. बेसिस यूनिटी है, प्ले ऑफ डिफरेंसिएशन. उन्हीं को आप थोड़ा बहुत फेर बदल करके, कार्बन वो थोड़ा चेंज हुआ, आइसोमर हो गया, कोयला बन गया, नहीं तो डायमंड बन गया, हीरा बन गया, जस्ट द प्ले ऑफ डिफ्रेंसिएशन। तो ये नेचर, क्योंकि ये सत्य है, अंदर में यूनिटी है, बाहर में प्ले ऑफ डिफ्रेंसिएशन है डिलाइट के लिए। इन द सोसाइटी वी फाइंड ए हिंट ऑफ फिजिकल एंड मेंटली कंसीव्ड यूनिटी अराइजिंग फ्रॉम वर्क, बट यूनिटी बेस्ड ऑन द सेल्फ इज द सोल ऑफ द स्पिरिचुअल कम्यून। बाहरी समाज में ऐसा होता है कि काम के आधार पर फिजिकल मेंटल यूनिटी होती है, आप किसी कंपनी में काम करें, कहीं काम करें, या मिलिट्री में, रेलवे में, तो आपस में एक प्रकार की एक भाईचारा होता है, लेकिन रूट में डिफरेंस है। और शेरविन कहते हैं कम्यून, स्पिरिचुअल कम्यून का जो रूट है उसमें यूनिटी इज बेस्ड नॉट ऑन वर्क बट ऑन दी सोल। और नेचुरल है कि जब तक व्यक्ति अपनी सोल को नहीं पाएगा तब तक ये यूनिटी संभव नहीं है। जब माता जी से किसी ने पूछा था नॉस्टिक कम्युनिटी के बारे में, माँ ने कहा एक बात तो सत्य है कि पहले हमें नॉस्टिक इंडिविजुअल बनना है, क्योंकि नॉस्टिक कम्युनिटी नॉस्टिक इंडिविजुअल्स से बनेगी, तो प्रयास हमारा उस दिशा में रहना है। जैसे जैसे बाहरी तरीके जब हम लोग अपनाएंगे यूनिटी के तो वो वर्कआउट नहीं करते, ये हम लोग दो दिन से देख रहे हैं। आप प्रयास करके देख लीजिए वो टूटेगा, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति अपने अंदर नॉस्टिक चेतना को धारण करेगा तो अपने आप यूनिटी आएगी। जब ऑरोविल आश्रम सोसाइटी प्रॉब्लम चल रही थी तो नलनी दास से किसी ने पूछा क्या हम प्रयास करें दोनों को साथ लाने का, पास लाने का, तो नलनी दास ने कहा नो जी, ये क्या कह रहे हैं। तो नलनी दास कहते हैं व्हेन पीपल ग्रो इनटू द नॉस्टिक कॉन्शियसनेस द यूनिटी विल कम ऑटोमेटिकली। जैसे जैसे हमारी चेतना विस्तृत होती जाएगी और ईश्वर तत्व के साथ एक होती जाएगी तो यूनिटी अपने आप एज ए कॉन्सिक्वेंस बाहर स्प्रेड करेगी। ये अदर वे राउंड नहीं काम करता है कि बैठ के हम लोग चलो देखिए फेस्टिवल्स बनाए यूनिटी के लिए, कितने सारे प्रयास करते हैं लोग अभी भी कि चलो एक कॉमन एक पार्टी कर लें, साथ में बैठ जाए, नहीं होता है। हर चीज ट्राई करते हैं लोग लेकिन संभव नहीं होता है, क्योंकि ये अपने आप में इम्पॉसिबिलिटी है। देर हैव बीन ए नंबर ऑफ पार्शियल एंड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स टू एस्टैब्लिश ए कम्यून इन ए लिमिटेड फील्ड, वेदर इंस्पायर्ड बाय द इंटेलेक्चुअल आइडियाज ऑफ द वेस्ट और इन ऑर्डर टू फॉलो अनहिंडर्ड द डिसिप्लिन ऑफ इनएक्शन लीडिंग टू निर्वाणा एज अमंग द बुद्धिस्ट्स, और बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ स्पिरिचुअल फीलिंग लाइक द अर्ली क्रिश्चियन कम्युनिटीज। तो ऐसी कम्युनिटीज हुई हैं बुद्ध के मार्ग में संघ, और क्रिश्चियन मिशनरीज के मोनेस्ट्रीज हुई हैं, तो इतना भी काफी नहीं कि एक स्पिरिचुअल फीलिंग है कि भाई ठीक है हम सब कॉमन गोल, केवल रियलाइज करके ही ये चीज संभव है। तो एक लंबे समय तक हर व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य है कि अपने अंदर छिपे सत्य को उद्घाटित करे, उसको पाए और उसको उससे जीवन जीने का प्रयास करे। दिस इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट, ये चीज हम लोग कल ह्यूमन साइकिल से पढ़ेंगे कि दिस इज द फर्स्ट नेसेसिटी। और अगर उसको बाहरी फ्रेम एक इंस्टीट्यूशन का सहायता करता है इस दिशा में तो निश्चित रूप से, और अगर वो सहायता नहीं करता है, बाधा कर रहा है, तो फिर वो फ्रेम हैज टू बी लेफ्ट साइड, क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट है। अगर वही चीज नहीं होती है तो बाकी सब बाहर की चीज केवल कुछ समय के लिए रहेगी, फिर कोलैप्स करेगी। दैट इज द फर्स्ट नेसेसिटी। बट बिफोर लॉन्ग ऑल द डिफेक्ट्स imperfections and normal tendencies of society infiltrated into the spiritual commune and brought it down to ordinary society. यही झगड़ा होता है ना सब जगह, सीनियर स्वामी जी कौन है, जूनियर स्वामी कौन है, मेरे को लंगर का इंचार्ज बनाया, मैं तो इतना मेडिटेशन करता हूं, मुझे मेडिटेशन रूम का इंचार्ज बनाना चाहिए। इन सब बातों पर आप कल्पना नहीं कर सकते हैं किन चीजों पर ईगो का प्ले हो सकता है, सभी जगहों पर, ये कोई एक जगह की बात नहीं कर रहा हूं। श्री अरविंद एक जगह लिखते हैं, आई हैव सीन आश्रम्स इन इंडिया एंड ऑल्सो एल्सवेयर. मैंने भी देखा है ये कितनी सारी जगहों पे. बाहर आपको नहीं दिखाई देगा लेकिन आप जाओगे देखोगे ऐसी ऐसी सिली चीजों पे झगड़ा हो रहा है. क्यों हो रहा है? क्योंकि केंद्र पे अभी भी वो व्यक्ति नहीं पहुंचा है. द आइडिया ऑफ द रेस्टलेस इंटेलेक्ट कैनॉट एंड्योर, इट इज वास्ट अवे बाय द इररेसिस्टिबल करेंट ऑफ ओल्ड एंड न्यू लाइफ इंपल्सेस. अब देखिए एक समय था और वो खत्म भी हो जाते हैं, फ्री मेसन सोसाइटी आई थी. अब धीरे धीरे वो इंटेलेक्चुअल नोशंस ऑफ वेस्ट की बात जो कर रहे हैं अब वो बड़ी लिमिटेड हो गई है. कहीं कहीं को इट ब्रेक्स क्योंकि न्यू लाइफ इंपल्स आती है, वो नई चीजें लेकर आती है. आप उसको कैसे इंटीग्रेट करोगे क्योंकि वो फॉर्म और स्ट्रक्चर पुराना पड़ गया, वो ढांचा पुराना हो गया है. यानी इंस्टीट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो इतना फ्री और फ्लेक्सिबल है. इसीलिए हम देखते हैं इस बैकग्राउंड से कि ऑरविल की रचना माने क्यों की है इस तरह से. उसमें रहने के लिए माने केवल एक ही कंडीशन दी थी. चार्टर में चार चीजें, तो एक कंडीशन उसमें यह दी थी कि द पर्सन लिविंग इन ऑरविल शुड बी ए विलिंग सर्विटर ऑफ द डिवाइन. उन्होंने नाम भी नहीं बोला नो रिलीजन्स, नहीं तो वो डिवाइन पर भी झगड़ा होता है, योर डिवाइन और माई डिवाइन उस पर भी लोग झगड़ा करेंगे. विलिंग सर्विटर ऑफ द डिवाइन. तो 124 भारत के स्टेट और कंट्रीज मिला करके 124 को लोग आए. रशियंस ने मना कर दिया तो माने उदार को भेजा क्योंकि रशियंस के अंदर बहुत मिस्टिसिज्म है लेकिन कम्युनिस्ट शासन के कारण. तो माने उदार को भेजा तो उदार ने कहा मां मैं वहां बोलूं क्या, इनको कैसे कन्विंस करूं. माने कहा नहीं नहीं तुम्हें कुछ करना है तुम जाओ, मैं बोलूंगी तुम्हारे थ्रू, दैट्स ऑल. कोई माने इंस्ट्रक्शन नहीं, यू गो, आई विल स्पीक थ्रू यू. तो रशियंस से उन्होंने कहा आपकी प्रॉब्लम क्या है, बोले हम तो डिवाइन में मानते नहीं. तो उदार ने कहा कि प्रोग्रेस में मानते हो, बोले हाँ. तो बोले प्रोग्रेस टुवर्ड्स परफेक्शन, बोले हाँ. बोले प्रोग्रेस टुवर्ड्स अल्टीमेट परफेक्शन, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं अल्टीमेट परफेक्शन थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है. तो नहीं कहा देखो ये अल्टीमेट परफेक्शन को ही गॉड कहते हैं. फिर मतलब उसके बाद बोले थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है लेकिन हम लोग मान लेंगे प्रोग्रेस टुवर्ड्स अल्टीमेट परफेक्शन. तो फिर उदार ने कहा कि तो ये अल्टीमेट परफेक्शन जो आप कह रहे हो ना इसी को गॉड डिवाइन कहा जा रहा है. अच्छा ऐसा है तो ठीक है हमें स्वीकार है. तो सब जितने चार्टर थे उस सब में विलिंग सर्विटर ऑफ द डिवाइन पढ़ा, और ऑरविल वालों ने वो रशियंस ने पढ़ा विलिंग सर्विटर ऑफ द टुवर्ड्स अल्टीमेट परफेक्शन. सो हाँ पढ़ा, वो सब पढ़ना पड़ा था ना उस सब ने. तो माने का कोई बात नहीं. अब देखिए कैसे रूट सही होना चाहिए. वो क्या नाम रूप ले रहा है अपने हिसाब से जा रहा है, इस नो प्रॉब्लम. पर रूट हम सब किस चीज में यूनाइटेड है. अगर किसी मनुष्य से आज पूछा जाए तो आपको एक सुंदर बेहतर स्वस्थ समाज हाँ चाहिए, आनंद सत्य प्रकाश प्रेम, हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से. पूर्णता एक शब्द में कहें तो पूर्णता, हाँ हाँ. अब देखिए इसके बाद तुम्हारी पूर्णता और मेरी पूर्णता, इसमें समस्या शुरू हो जाती है. लेकिन ये सब की कॉमन एस्पिरेशन है और उस एस्पिरेशन में हमें यूनाइट होना है. संगच्छत्वम संगवदत्वम संगो मनासी, दैट इज द एस्पिरेशन फायर के अराउंड. तो ये श्री अरविंद हम लोगों को रिवील कर रहे हैं इस ट्रुथ को. एन इंटेंसिटी ऑफ इमोशन कैनॉट ब्रिंग अबाउट सक्सेस इन दिस एंडेवर. इमोशन इज वर्न आउट बाई इट्स ओन इम्पीटस. लोग कहते ना क्या हो गया, देखो देशभक्ति के समय हम सब कितने एकजुट थे. क्या था इंटेंसिटी ऑफ इमोशन. जैसी कारण खत्म हुआ सब अपनी अपनी लुटिया में नदी भरने में लग गए. वो होता है एक बार, एक इंटेंसिटी ऑफ इमोशन शत्रुओं को भी साथ ले आता है. कहते हैं ना कॉमन फियर कॉमन गोल ब्रिंग्स पीपल टुगेदर. वो यूनिटी नहीं है, वो एक बड़ी टेम्पररी चीज है. बहुत देर तक ये इमोशनल इंपल्स सस्टेन नहीं कर सकती है, चढ़ेगी एक क्रेस्ट पर कुछ समय बाद गिर जाएगी। वंस ought टू सीक निर्वाणा ऑल अलोन, टू फॉर्म ए कम्यून फॉर द लव ऑफ निर्वाणा इज ए कॉन्ट्राडिक्टरी एक्शन। निर्वाण निर्वाण सब, और यहां निर्वाण केवल बुद्धिस्ट निर्वाण की बात नहीं कर रहे, इतने सारे स्पिरिचुअल मूवमेंट्स हैं जिसमें गोल मुक्ति है, तो वो दैट कम्यून बाई इट सेल्फ इज कॉन्ट्राडिक्टरी। ए स्पिरिचुअल कम्यून इज बाई इट्स वेरी नेचर ए फील्ड फॉर द प्ले ऑफ वर्क एंड म्यूचुअलिटी। कौन सा वर्क, वहां पर माता जी और अरविल के चार्टर ने कितना सुंदर उन्होंने एजेंडा दिया है, थर्स्ट फॉर एंडलेस प्रोग्रेस एक्सपेरिमेंटेशन एंड एजुकेशन। और अरविल में ये सब अलाउड है, किस किस तरह के एक्सपेरिमेंट, उसको भी लोगों ने गलत समझा। वो सब अपने अपने ढंग से फ्रीडम है, तो जितने हिप्पीज आ गए उन्होंने कहा फ्रीडम है, ड्रग्स लेके आ गए, एक कंट्री मिली जहां ड्रग्स ले सकते हैं। पीपल डिडंट रियलाइज कि माँ किस फ्रीडम की बात करी, तब माँ को डिफाइन करना पड़ा फ्रीडम। माँ से जब कोई कहता था माँ रूल रूल के लिए, तो माँ कहती है आई डोंट लाइक दिस वर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, माँ की वाणी में है। माँ कहती लेकिन चूंकि अगर मैं कुछ नहीं कहूंगी तो तुम लोग फिर मेरे ऊपर कि आपने रूल नहीं बनाए तो ये हो रहा है वो हो रहा है समस्या, तो फॉर द सेक ऑफ दैट आई एम मेकिंग सम रूल्स। माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। कोई चीज कंपल्शन से की जाती है वो पूरा फ्रीडम स्वेच्छा से कोई चीज होनी चाहिए। इसीलिए इस योग में कन्वर्ट करना, दूसरों को जाकर कन्विंस करना, ये सब इसमें नहीं है। ये तो अपने आप अंदर से खुलने की चीज है, और जब तक आदमी अंदर से नहीं पकड़ा जाएगा तो 10 बार घसीट के लाना ये कोई सिस्टम नहीं है। तो इसलिए पूरी फ्रीडम पर बेस्ड होना चाहिए। तो फिर ये कैसे संभव होगा? माता जी से एक बार किसी ने पूछा था कलेक्टिव हार्मनी, माँ ने कहा ये काम केवल डिवाइन कर सकता है, ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, ओनली द डिवाइन कैन रियलाइज इट। नलनी दा ने जब श्री अरविंद से पूछा व्हाट इज द बेसिस ऑफ कलेक्टिव हार्मनी, श्री अरविंद ने अद्भुत उत्तर दिया, यूनियन इन द मदर। पहले तुम अपनी चेतना को मां के साथ जोड़ो, फिर उनकी चेतना के अंदर बाकी सबसे जुड़ो, नॉट नेसेसरी आउटसाइड। देखिए कितना अद्भुत उत्तर है, यूनियन इन द मदर, और तुम जो जुड़ जाएगा उसके लिए ये अपने आप एक सत्य होगा। जैसे जैसे जुड़ेगा जितना जितना उसके लिए सत्य प्रकट होने लगेगा। The self-born unity will come into being by the harmony and integration of knowledge, devotion and work as impelled by the will of the Virat Purusha, the universal person. On that day, the chariot of Jagannath will come out on the avenues of the world. अभी तो वो अपूर्ण मूर्ति है, और इसके लिए करना क्या है? शेरविन कहते हैं यूनिटी तुम रियलाइज करना चाहते हो संसार में, पहले तुम नॉलेज डिवोशन एंड वर्क इस त्रिवेणी को अपने अंदर यूनाइट करो, गंगा जमुना सरस्वती, और ये तुम अगर यूनाइट करोगे तो तुम्हें स्वतः ही यूनिटी बाहर फैलेगी और प्रकट होने लगेगी। एक शेयरविंद ने आर्य जो प्रारंभ हुआ था 100 वर्ष पूर्व, तो प्रश्न किया था किसी ने व्हाट इज द नीडेड सिंथेसिस एट प्रेजेंट, तो श्री अरविंद कहते हैं अनडाउटेडली दैट ऑफ मैन हिमसेल्फ। सबसे पहली चीज जिसको यूनिटी प्राप्त करनी है मनुष्य को अपने अंदर, और फिर वो कहते हैं द कैरेक्टरिस्टिक मेलेडी ऑफ दिस एज इज ए डाइवोर्स बिटवीन इंटेलेक्ट एंड फेथ, रीजन एंड लव, डाइवोर्स है दोनों। और जब तक ये हार्मोनाइज नहीं होंगे, यूनाइट नहीं होंगे, इंटेलेक्ट हृदय मस्तिष्क दिमाग ज्ञान की ऊर्जा और कर्म की शक्ति, ये तीनों एक साथ होंगे तभी हम इंटीग्रल गॉडहेड को अपने अंदर पा सकेंगे। नहीं तो हम हमेशा गॉडहेड का कोई एक रूप, या तो बाल कृष्ण को प्रेम करेंगे, या कृष्ण के मधुर भाव को प्रेम करेंगे, यहां तक कि उनको सन्यासी भी बना देते हैं, कुछ लोग सन्यास ले लेते हैं श्री कृष्ण जी के नाम पर। लेकिन या फिर श्री कृष्ण ऑफ द कुरुक्षेत्रा, ये सभी तो श्री कृष्ण है, लेकिन श्री कृष्ण की संपूर्णता वह क्या है? वो जो एम्ब्रेस है श्री कृष्ण की संपूर्णता में, तो यहां पर इसका संकेत है। ये गीता में है ना, यूनिटी ऑफ नॉलेज डिवोशन एंड वर्क्स। जब ये तीनों मनुष्य के अंदर एक हो जाएंगे, अभी ये तीनों विभक्त हैं, रीजन तो ऊंचा उड़ता है, वेदांत दर्शन करता है, डिवोशन केवल अपने और अपने परिवार वालों के प्रति है, और वर्क्स अपनी इच्छा की तुष्टि के लिए है, तो क्या होता है, समाज वर्क्स के आधार पर होता है, किन लोगों से हमारा उठना बैठना होता है, जो हमारे वर्क के तौर पे कॉमन इंटरेस्ट, वो हमारा समाज होता है। एक दूसरा समाज हमारे परिवार वालों का होता है, क्योंकि हमारा हृदय, हार्ट इज नॉट इन द राइट प्लेस। और एक तीसरा समाज होता है जहां इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होते हैं, सत्संग का ये विकृत रूप है, इंटेलेक्चुअल डिस्कशन, वो एक तीसरा समाज हो, तीन समाज होते हैं, और तीनों में हम बटे होते हैं, एक और शादी ब्याह ये सब में भी जाते हैं, दूसरी ओर थोड़े समय जाकर ऐसे सत्संग में भी बैठ जाते हैं, और तीसरी ओर अपने परिवार वालों के साथ बड़ा सुख आता है जब बात करते हैं पुराने समय की। लेकिन ये तो विभक्ति है। श्री अरविंद कहते हैं पहले अपने अंदर नॉलेज, वर्क्स और डिवोशन, तीनों को एक करना है। डिवोशन टुवर्ड्स द डिवाइन, द लॉर्ड जगन्नाथ। कौन सा डिवाइन? वो नहीं जो केवल एक सेक्ट का बिलोंग करता है, वह डिवाइन जो यूनिवर्सल गॉडहेड है, ये भी कह रहे हैं। ये नहीं कि मेरा डिवाइन तुम्हारे डिवाइन से अच्छा, मेरी साड़ी तेरी साड़ी से ज्यादा सफेद, इज द सेम मेंटेलिटी। यूनिवर्सल डेटी जो घट घट का वासी है, वो डिवाइन, उसको प्रेम करना है। तो नेचुरली उसको प्रेम करेंगे तो बाकी सबको प्रेम करेंगे। नॉलेज, ये नहीं कि रीजन एक दिशा में जा रहा है, हृदय तो भगवान की ओर, कभी कभी ये भी होता है हृदय भगवान की ओर जा रहा है लेकिन मन कहीं और भटक रहा है, कर्म कहीं और जा रहे हैं, तो मन भी हमारा उसी दिशा में, उन्हीं को जानने के लिए। क्यों जानने के लिए? ताकि उनकी हम सेवा कर सकें। एक माता जी की बड़ी सुंदर प्रेयर है, लॉर्ड हेल्प अस टू नो यू बेटर सो दैट वी कैन लव यू एंड सर्व यू बेटर। ज्ञान किस लिए? ताकि हम तुझे और अधिक प्रेम कर सके, और अधिक तेरी सेवा कर सके। अद्भुत प्रेयर है, सर्व यू, सेवा। अब ये दोनों भी हैं लेकिन सेवा नहीं कर रहे। जब ये तीनों चीजें एक हो जाएंगी तब अपने आप हमें ये यूनिटी जो हम अंदर रियलाइज करेंगे वही बाहर दिखाई देने लगेगी। सभी मनुष्यों के सभी एफर्ट्स में जहां भी कोई चीज है जो मुड़ी हुई है उस ओर हमें दिखाई दे जाएगा और हम उससे कनेक्ट हो जाएंगे, हम भेदभाव अपने आप समाप्त हो जाए और बाकी जो टेंडेंसीज है उसको हम साइड कर देंगे। लेकिन एक यूनिटी का पॉइंट आ जाएगा कि हाँ ठीक है, ये भी एक यूनिटी का विषय है। सच्चा जो भक्त होता है वो वास्तव में पहचानता है किसी भी सच्चे उसको कहीं पर भी, वो सेक्स में बंधा नहीं रहता, क्योंकि वो उसके अंदर जो यूनिवर्सल गॉडहेड को प्रेम करता है तो वो सबके अंदर उस प्रेम के बीच को पहचान लेता है। तो उसी प्रकार से श्री अरविंद कहते हैं उसको रियलाइज करने का तरीका, द डे द सेल्फ बॉर्न यूनिटी, प्रयास नहीं करना है, सेल्फ में सब यूनाइटेड है, उस रियलाइजेशन के बाद स्वतः ही हो जाती है, विल कम इन टू बींग बाय द हार्मनी। प्रोसेस क्या है? हार्मनी एंड इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज, डिवोशन एंड वर्क, एज इंपेल्ड बाय द विल ऑफ द विराट पुरुषा, द यूनिवर्सल पर्सन, ऑन दैट डे द चैरियट ऑफ जगन्नाथ विल कम आउट ऑन द एवेन्यूज ऑफ द वर्ल्ड, रेडिएटिंग इट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शंस, सत्य युग, द एज ऑफ ट्रूथ विल डिसेंड अपॉन अर्थ, द वर्ल्ड ऑफ मॉर्टल मैन विल बिकम द फील्ड फॉर द प्ले ऑफ द डिवाइन, द टेम्पल सिटी ऑफ गॉड। और विल का पहला डेफिनेशन, क्योंकि इस केंद्र में क्या है? मातृ मंदिर, द टेम्पल सिटी ऑफ गॉड, द मेट्रोपोलिस ऑफ आनंदा, क्योंकि वहां सब कुछ जो भी कर्म होंगे सब आनंद से प्रेरित होंगे, आनंद के लिए होंगे, कोई बाहरी इसके लिए नहीं होगी। ऑरोविल में मनी का बिल्कुल प्ले नहीं है। ऑरोविल में ऑरोविल बिलोंग्स टू नो बडी इन पार्टिकुलर, इट बिलोंग्स टू ह्यूमैनिटी एज ए होल। कितनी सुंदर बात देखिए, लेकिन हर चीज भगवान की, लोग कैसे डिस्टॉर्ट करते हैं। एक बार वो मातृ मंदिर जाने के लिए दो तीन लॉयर और वो जज पहुंच गए और पूरे शराब पी करके, अब उनसे कहा गया नहीं इस अवस्था में आप नहीं जा सकते हैं, आपको मना नहीं है लेकिन आप क्यों क्यों रोकोगे, और सबका है। मानव सत्य को जब हमारी स्थूल बुद्धि पकड़ती है तो ये नतीजा होता है। तो ऑरोविल बिलोंग्स टू नोबडी, टू लिव इन ऑरोविल यू हैव टू बी ए विलिंग सर्विटर ऑफ द डिवाइन कॉन्शियसनेस। ऑरोविल इज ए प्लेस ऑफ अनएंडिंग एजुकेशन, यानी जो ऑरोविल में जाते हैं इस महाप्रयोग में भाग लेने के लिए, उनके अंदर सदैव एक बालपन होना चाहिए, अनएंडिंग एजुकेशन। ये नहीं कि हम जान गए हैं, और थर्स्ट फॉर प्रोग्रेस, एक्सपेरिमेंटेशन, नई चीजें, नए प्रयोग करने के प्रति उत्साह, उमंग। और इट इज इंटरेस्टिंग कितने सोलर एनर्जी आज जो ये सब कितने प्रोजेक्ट्स ऑरोविल में स्टार्ट हुए, और बहुत कम लोग जानते हैं कि आश्रम के चमनलाल जी वाज ए पायनियर इन दिस फील्ड। फॉरेन कंट्रीज में कहां कहां उनको बुलाया गया था, he has done a pioneering work in the field of solar education. Ashram se unending education, sir, experimentation.
ek jo antariksh mein yatri jaate
hain ha,
to unke bhojanarth jo capsule hai kuch Orville mein koi production,
Orville mein prayas hua hai us food ke banane ka prayas hua hai। आई एम नॉट श्योर कि वो एक्सेप्ट किया गया है कि नहीं अभी, लेकिन आपने बिल्कुल सही, उस पर प्रयास हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं इस तरह के फूड बनाने के, डायनामिस्ड वाटर बनाने के, जल जो जिसको एक विशेष वाइब्रेशन से उसको चार्ज किया जाए, उसके प्रयोग भी हुए हैं वहां पर। ये आपको फ्रीडम है, कोई ये नहीं कहेगा कि आप क्या कर रहे हो, यू एक्सपेरिमेंट ट्राई, कोई नई चीज, और ये होना ही चाहिए, नए तरीके आने चाहिए, हेल्थ के फील्ड में नई नई चीजें आनी चाहिए, मैनिफेस्ट होनी चाहिए। ये तो माशी अरविंद चाहते हैं, मुझे ये श्योर नहीं कि हुए हैं कि नहीं हुए हैं, मैं पता कर सकता हूं, नासा में लोगों को जानता हूं। अब ये आपने प्रश्न किया है तो ऑरोविल में भी आई लास्ट कैन आई कैन लेट यू नो, बट अभी एज ऑफ नाउ मुझे ये पक्का नहीं है इसलिए मैं कह नहीं सकता, पर मुझे ये मालूम है कि प्रयोग इसके हुए हैं, इसका वर्णन भी है, और इस बारे में माने एजेंडा में एक हिंट भी दिया इसका। और इस प्रयोग के पीछे केवल स्पेस की बात नहीं है, इस प्रयोग के पीछे एक बहुत बड़ा एक महत्व प्रयोजन है। माने एक जगह कहती हैं कि जो हम भोजन करते हैं तो हम चाहे ना चाहे निश्चेतना का एक बहुत लंबा बहुत बड़ा पोर्शन हम अपने अंदर सोखते हैं, चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। आता कहां से, अर्थ से है, तो अर्थ में तो वो सब मिनरल प्लांट यही सब है ना। देखिए एनिमल और वेजिटेबल फूड में डिफरेंस क्या होता है, वेजिटेबल फूड उसी मिट्टी को अपने अंदर सोख के प्राणवंत बनाता है, दैट्स वेजिटेरियन फूड। तो वाइटल फिजिकल लेयर में अर्थ की निश्चेतना जड़त्व यूं कहें जड़ता उसके अंदर विद्यमान है। एनिमल उस प्लांट को खाता है और कुछ एनिमल एनिमल्स को भी खाते हैं, तो दो प्रकार के एनिमल हुए, एक जो उस प्लांट को खाते हैं उनके अंदर कुछ हद तक अब वो जो एक प्लांट केवल लोअर वाइटल फिजिकल नहीं, दूसरा लेयर भी आ गया उनके अंदर, और जो पशुओं को खाते हैं उनके अंदर और भी अधिक रेज फियर ये सब भी प्रवृत्तियां आ गई। तो ये एक लेकिन अल्टीमेटली वो निश्चेतना से निकला। तो जब तक मनुष्य इस भोजन पर स्वयं को निर्भर करता रहेगा, तो माँ ने इस पर कई प्रयोग किए, जब वो वहां पर थी तेओ के पास तभी उन्होंने अल्जीरिया में प्रयोग किया था, वो फूल से, मैडम तेओ तो फूल से पूरी एनर्जी सोख लेती थी अपने अंदर, तो माँ भी बता दी कैसे वो एप्पल को लिया और एनर्जी को डायरेक्ट ले लिया, पुष्प को सूंघा और उससे एनर्जी ले ली डायरेक्टली। माँ ने कई बार ये प्रयोग किए, 10 दिन तक भोजन वोजन कुछ नहीं खाया, श्री अरविंद ने 40 डेज ही डिड नॉट ही वेंट विदाउट, लेकिन उसमें समस्या ये होती थी कि जो मांस है वो खत्म होने लगता था, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी. ही वॉज फुल्ली एनर्जेटिक, वॉकिंग 8 hours ए डे, डूइंग ऑल हिज एक्टिविटीज. ऊर्जा की समस्या नहीं होती थी उनको, वो प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व कर ली थी. लेकिन मैटर को कैसे रिप्लेस करें ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करी थी. तो उस कंटेक्स्ट में माँ डिसाइपल से कहती हैं, एक ऐसा अगर भोजन हो जिसमें सारे केमिकल तत्व हो तो ये समस्या काफी हद तक सॉल्व हो जाएगी. क्योंकि आप एक कैप्सूल लेंगे और उस कैप्सूल के अंदर एक कंसंट्रेटेड चीज है, और वो जो इतना सारा भोजन हमको खाना पड़ता है, बहुत कम पचता है और अधिकतर वेस्ट जाता है, जो भी वो एक प्रोसेस जो है उसमें निश्चेतना भी हम लोग बहुत कुछ सोखते हैं. श्री अरविंद के बहुत सारे प्रयोग रिकॉर्ड्स ऑफ योगा में हैं. उसमें एक प्रयोग ये था कि उच्चतर शक्ति जो है आनंद, यहाँ तक कि कोशिकाओं में आनंद उतरने की बात वो करते हैं, तो उसके प्रभाव से इवन जो वेस्ट है हमारे शरीर में वो मिनिमम हो जाए. इट्स अमेजिंग व्हाट काइंड ऑफ प्रयोग उन्होंने किए हैं. तो उस कंटेक्स्ट में माँ जब डिसाइपल से कहती हैं, तो डिसाइपल कहता है कुछ बात होती है, माँ कहती सुना है मैंने कि वो रॉकेट भेज रहे हैं स्पेस में और इस तरह का भोजन बनाने की वो सोच रहे हैं, यदि ऐसा होगा तो बहुत अच्छा होगा. तो लोगों ने इसके प्रयोग प्रारंभ किया और ऑरोविल में प्रयोग हुए बहुत सारे. स्पिरुलाना इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स बेस्ड ऑन दैट, और होंगे आने वाले समय में, आज नहीं तो कल, और ऑरोविल नहीं तो कहीं और, ये सत्य आएंगे सामने, क्योंकि ये विल ऑफ द जगन्नाथ लिख दिया ना. लेकिन हम भी उसी दिशा में, अगर हम लोग नई चीजें एजुकेशन के फील्ड में देखिए, ऑरोविल के कई सारे स्कूल हुए, ऐसे से नाम दिए, ऑरोविल में फिर एक स्कूल बना, तो माँ से नाम पूछने के लिए गए, माँ ने कहा द लास्ट स्कूल, कि हम स्कूल बंद करो, यूनिवर्सल लर्निंग की समय आ रहा है. लेकिन मनुष्य नहीं कर पाता, वो लीप ऑफ फेथ जो चाहिए वो कठिन होती है, कैसे होगा, पेरेंट्स ये वो दस दस तरह की चीजें होती है, बट इट्स ए लीप ऑफ फेथ. पर उसके साथ डिलाइट भी है, क्योंकि भगवान के काम में इवन फेल्योर इज ए विक्ट्री. सो बहुत सुंदर कई सारी चीजें ऐसी हो रही हैं. सोलर एनर्जी, एनर्जी ऑफ द फ्यूचर, माने कहा है इसके बारे में, एनर्जी ऑफ द फ्यूचर. अब तक हमारे साइंटिस्ट उस दिशा में पूरी तरह से देख नहीं पाए. इट इज वेरी गुड कि अब ये चीज शुरू हुई है एक्टिवेट. और क्यों नहीं करते थे, सिंपल इकोनॉमिक्स. पूरा वर्ल्ड पेट्रोल की इकोनॉमी पे चल रहा था, इसके पीछे कई लोगों की स्वार्थ सिद्धि पीछे थी. भारतवर्ष में ये प्रयोग एनकरेज नहीं किया गया, लेकिन अब ये प्रयोग फिर से एक बार एक्टिवेट हो रहा है. अब इंडिया में देखिए कितनी एनर्जी एनर्जी है. सोलर एनर्जी तो मतलब हमें सोलर एनर्जी और सी एनर्जी, ये दो एनर्जी से हम लोग बहुत सारी समस्या सॉल्व कर सकते हैं. अबंडेंट है हमारे यहाँ, तीन तरफ समुद्र है, ऊपर सूर्य सूर्य है. तो ये तो चैरियट ऑफ जगन्नाथ. अगर कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं. आई थिंक आई फिनिश द लास्ट सेंटेंस ना, द मेट्रोपोलिस ऑफ आनंद, आनंद लोक. थोड़ा सा मैंने इससे रश किया है, क्योंकि कल मैं थोड़ा ह्यूमन साइकिल से भी पढ़ना चाहता हूँ, कि फिर हम लोग कैसे इस दिशा में हेल्प कर सकते हैं, किस प्रकार से. यहाँ तो श्री अरविंद ने हिंट्स दिए हैं, उसी हिंट्स के आधार पर वी विल रीड समथिंग फ्रॉम ह्यूमन साइकिल एंड समथिंग फ्रॉम सावित्री. हाँ हाँ हाँ, मेडिटेशन के बारे में. प्रश्न है मेडिटेशन के बारे में, पहले उसकी थोड़ी सी भूमिका हो जाए कि मेडिटेशन एक प्रक्रिया है अपने अंदर के सत्य या संसार के अंदर जो सत्य है, दोनों एक ही हैं, उनसे संपर्क में आने की. लेकिन यह एकमात्र प्रक्रिया नहीं है. एक चीज, क्योंकि अक्सर हम लोग ऐसा सोच लेते हैं कि मेडिटेशन ही एकमात्र रास्ता है, और भी मार्ग हैं जो उस सत्य तक हमें ले जाते हैं. दूसरी चीज यह है कि मेडिटेशन के पहले एक भूमिका है पूरी. अक्सर जब मेडिटेशन की बात होती है तो एक टेक्निक के रूप में मेडिटेशन को बताया जाता है. कोर्सेज होते हैं जिसमें ध्यान की विधि बताई जाती है, ऐसे बैठो, ऐसे ध्यान करो. लेकिन मेडिटेशन एक अवस्था है जिसमें स्वतः व्यक्ति प्रवेश करने लगता है यदि उसने बैकग्राउंड काम किया है। एक बैकग्राउंड काम काफी आवश्यक है और सबसे सुंदर बैकग्राउंड काम मेडिटेशन का होता है वो होता है निष्काम कर्म, भगवत गीता का जो ये सत्य है, क्योंकि वे चीजें जो हमें अंदर जाने से रोकती हैं। एक छोटी सी कहानी है कि तीन नाविक पूरी रात नाव खेते रहे लेकिन नाव वहीं पर रही, थक गए, आगे नहीं बढ़ी। सुबह उठ के देखा कि नाव बंधी थी जिस लंगर से, उसको खोला ही नहीं था। इसीलिए मेडिटेशन के साथ साथ या मेडिटेशन के पूर्व जो भी हम कह लें, कुछ एसेंशियल चीजें हैं जो करनी आवश्यक होती है। फॉर एग्जाम्पल डिटैचमेंट, अगर ये डिटैचमेंट नहीं है, बेसिक डिटैचमेंट, ये डिटैचमेंट का अर्थ वो नहीं कि हम बाहर की चीजों से, अंदर हमारे ईगो सेल्फ से, डिजायर सेल्फ से, अंदर ही तो आदमी बनता है, बाहर किसी चीज से नहीं बनता है, सारी चीज अंदर है। तो डिटैच होने के लिए निष्काम कर्म बहुत सिंपल तरीका है, क्योंकि हम हर कर्म, चाहे वो मानव संबंध का कर्म हो, ऑफिस का कर्म हो, घर का कर्म हो, किसी ना किसी रिजल्ट की अपेक्षा से करते हैं। अगर इसमें साइकोलॉजी देखिए तो हम कर्म कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट के लिए कर रहे हैं। बहुत अच्छा खाना बनाया लेकिन अगर बच्चे ने अप्रिशिएट नहीं किया तो सारा वो खत्म हो जाता है। तो कर्म तो कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है हर चीज में। तो निष्काम कर्म हर चीज में, ना केवल बाहर के कर्म में, हमारे जीवन में, हमारे संबंधों में निष्काम कर्म, निष्काम प्रेम, निष्काम भाव से हर चीज करना। हमें इससे क्या प्राप्त होगा ये नहीं। तो वो अपने आप वो डिटैचमेंट हमारे ईगो सेल्फ और डिजायर सेल्फ से होने लगता है और डिटैचमेंट आने लगती है और पकड़ जो है कामना की वो कम हो जाती है। साथ ही अगर उसके साथ हम दूसरी चीज जोड़ दें जो सभी मेडिटेशन टेक्निक्स में नहीं बताते, क्योंकि कई लोग इम्पर्सनैलिटी में विश्वास करते हैं, लेकिन वे लोग जो डिवाइन, ना केवल इम्पर्सनल बल्कि पर्सनल, डिवाइन की पर्सनैलिटी में भी विश्वास करते हैं, पुरुषोत्तम और गीता, तो उनके लिए सहज होता है कि वो अपनी ऊर्जा को भगवान से जोड़ने का प्रयास करें। उसके लिए नाम जप स्मरण इत्यादि बहुत सुंदर माध्यम है। तो एक हुआ कि डिजायर्ड सेल्फ और ईगो सेल्फ से हमारी ऊर्जा को छूटना जरूरी है, नहीं तो हम बैठेंगे, रोज बैठेंगे नियम से, प्रयास करेंगे लेकिन छटपट छटपट होती रहेगी। तो ये जरूरी है कि ऊर्जाएं वहां से छूटे, ये दोनों चीज साथ में नहीं चलती। और दूसरा है कि हम जोड़ें इस ऊर्जा, अब वो अवेलेबल है हमारे पास, उसको क्या करें, तो उसको हम जोड़ें जो भी हमारे लिए इष्ट गुरु, जिस भी रूप में हम भगवान इमेज करते हैं, क्योंकि सीधा उसमें जोड़ना कठिन होता है, वो जो सर्वत्र व्याप्त है। सम पीपल कैन डू इट, बट ईश उपनिषद में तो यही बताया कि उस पर मेडिटेट करो जो सर्वव्याप्त है, लेकिन ये सरल नहीं होता, इसलिए नाम रूप का अवलंब। अब कोई सा भी नाम, ओम हो, माँ हो, या मंत्र हो, ओम नमो भगवते, इट डजंट मैटर, और कोई सा भी रूप जिसमें हमें भगवान इष्ट के रूप में दिखाई देते हैं। ये मैं एक जनरल भूमि बता रहा हूं, हमारे पर्टिकुलर योग की नहीं कह रहा हूं, एक जनरल भूमि। तो ये जब हम करते हैं दोनों प्रैक्टिस, तो धीरे धीरे ऐसे अवसर आते हैं जब हम कुछ क्षण के लिए, सावित्री में जिसका वर्णन है, ए ग्रेटर कॉन्शियसनेस ओपन्स देन इट्स डोर्स, अचानक ऐसा समय आएगा, वो हो सकता है कार चलाते समय हो रहा हो, कौन उस दिन वर्णन कर रहे थे, अमित कौन, हाँ कई बार ऐसा होता है ना, आप गाड़ी चला रहे हैं, ये प्रयास अगर कर रहे हैं अचानक आप, क्योंकि वो मैकेनिकल एक्टिविटी है, तो चेतना आपकी फ्री है, तो फ्री होके उसको आदत है किधर जाने की, भगवान की ओर जाने की, तो अचानक वो स्लिप कर जाती है एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, और ये क्षण आपके पास और फ्रीक्वेंटली बढ़ते जाते हैं। फिर क्या होता है, जब ये चीज रंग पकड़ने लगती है, तब मेडिटेशन एक सहज प्रक्रिया हो जाती है, जिसको कबीरदास जी कहते हैं साधो सहज समाधि भली। उसमें आप कैसे बैठ रहे हैं, आलती पालती या सीधा पांव करके, इट डजंट मैटर, वो अवस्था आपको ऊपर से उतरती है और आपको अपने अधिकृत कर लेती है। और जब तक वो अवस्था आपको अपने अधिकृत किए है, तो आपको उससे बाहर नहीं निकलना चाहिए, उसमें कोई टाइम फिक्स नहीं करना चाहिए। और अगर वो अवस्था नहीं आ रही तो सिर्फ बैठकर आधे घंटे छटपट करना ये भी आवश्यक नहीं है, इसमें एक सहजता होनी चाहिए और सच्चाई होनी चाहिए। तो वो अवस्था आएगी भगवान की कृपा से और ये सब प्रयास करेंगे और धीरे धीरे हम उसमें डूबने लगेंगे। जब ये अवस्था प्रारंभ होती है तो एक दूसरी समस्या आ जाती है, जैसे जैसे हम इस गहराई में जाते हैं ईगो सेल्फ को भय, क्योंकि बहुत सारी चीजें अंदर में संकेत के रूप में प्रकट होने लगेंगी और कभी कभी ईगो सेल्फ भयभीत हो जाता है, वो नहीं होना, दैट हैज टू बी, वो उसके लिए ट्रस्ट फेथ ये सब जरूरी है और वो एक अलग प्रोसेस है, उसकी बात नहीं करें अभी, शायद कोई प्रश्न हो तो कर लेंगे वो बात, लेकिन भय नहीं, ये आनंद का विषय है। तीसरी चीज, मेडिटेशन केवल एक एक्टिविटी नहीं है, केवल एक टेक्निक नहीं है। जैसे हम लोग भोजन खाते हैं, जैसे हम लोग खेल खेलते हैं, वैसे ही मेडिटेशन को भी हमें ऑफर करना चाहिए। अक्सर हम लोग खेल के पहले, भोजन के पहले, काम के पहले ऑफर करते हैं, लेकिन मेडिटेशन को हम सोचते हैं ये निष्क्रिय चीज है, ऐसा नहीं है, ये भी एक कर्म है, बहुत बड़ा कर्म है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। तो उस कर्म के पहले भी, मां मेरा ध्यान मैं तुझे अर्पित करता हूं, मेरे ध्यान की बाधाओं को दूर करो मां, मेरे ध्यान को और सघन और गहरा और तीव्र और विस्तृत बनाते जाओ, इस प्रेयर के साथ। और जब हम मेडिटेशन से बाहर आए नेचुरल कोर्स में, तो फिर मां तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे ध्यान को, तो अब एक और है कि हम प्रयास कर रहे हैं अंदर जाने का, दूसरी ओर है भगवान अपनी ओर से हमें खींच रहा है अंदर, तो उसका बड़ा आनंद है। सो ये हमें प्रयास करना चाहिए, वी शुड ऑफर द मेडिटेशन। कई बार एक इमेज का सहायता लेना, इमेज की सहायता लेना बहुत हेल्पफुल होता है, और इमेज होनी चाहिए जो सत्य से जुड़ी हो। दो प्रकार की इमेजिनेशन होती है, एक जिसको मां कहती है ट्रूथ इमेजिनेशन, और दूसरी होती है वहां जो मन भटक रहा है, कोई भी इमेज उसने बना दी। ट्रूथ इमेजिनेशन वो होती है जो एक्चुअल एक्सपीरियंस से मेल खाती है काफी हद तक। जैसे मां ने दो तीन इमेजेस दी हैं, एक इमेज दी है कि द्वार के सामने तुम बैठे हो और द्वार पे जोर लगा रहे हो कि खुले खुले खुले, प्रयास कर रहे हो पूरी ऊर्जा को एकाग्र करके, और एक दिन इस प्रयास के फलस्वरूप वो द्वार खुल जाता है, ऑफकोर्स अंदर से खुलता है, लेकिन हमारी ओर से ये एक इमेज है। दूसरी इमेज मां कहती है कि जैसे एक वेल है, एक कुआं है, उसमें अंदर 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 जाते जा रहे हो, जिसके उस छोर पे प्रकाश है, दिखाई नहीं दे रहा, पर हम जाते जा रहे हैं उसमें कि वो प्रकाश आएगा आएगा आएगा, ये एक इमेज है। एक और इमेज है, ये सारी इमेजेस के सहायता से मां डायनामिक मेडिटेशन की भी बात करी है, जिसमें हम यहां पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं मां सिर के बाहर, और इमेज की एक प्रकाश, श्वेत शुभ्र शांत प्रकाश उतरता जा रहा है, और पहले हमारे मन आंखें कान नाक सभी इंद्रिया, मुख वाणी कंठ हृदय फेफड़े सारे ऑर्गन्स, एब्डोमेन के जंघाएं घुटने पांव नक शिक सब कुछ में समाता जा रहा है, और हम उस इमेज के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे जैसे वो प्रकाश उतर रहा है, पीस एंड लाइट इन माय माइंड एंड इन माय अंडरस्टैंडिंग, पीस इन माय हेड एंड पीस इन माय थॉट्स, पहले पीस को उतारें, पीस इन माय आईज पीस इन माय साइट, एक शांति मंत्र है ना, कि जो हम देखें वो शुभ हो, जो हम सुने वो शुभ हो। शांति मंत्र कैसे है, देखिए शांति लाता है, कितना कुछ हम देखते हैं जिससे उद्विग्नता उत्तेजना पैदा होती है। पीस इन माय ईयर्स पीस इन माय हियरिंग पीस इन माय स्पीच एंड पीस इन माय वॉइस, मेरी वाणी सबको शांति दे। पीस इन माय हार्ट एंड पीस इन माय हार्ट बीट्स, पीस इन माई लंग्स एंड पीस इन माई ब्रीदिंग, पीस इन माई बेस एंड पीस इन माई सीट, पीस इन माई आर्म्स एंड पीस इन माई हैंड्स, पीस इन माई लेग्स एंड पीस इन माई फीट. ओम शांति शांति शांति. इसको हम लोग आगे ले जा सकते हैं. पीस एंड लाइट, पीस लाइट स्ट्रेंथ बीटिट्यूड, पीस लाइट स्ट्रेंथ बीटिट्यूड आनंदा, इवन कॉन्शियसनेस ऑफ इमोर्टैलिटी. ये डेवलप पहले पीस का आधार बनाना है. काम पीस इक्वानिमिटी को अपने अंदर उतारे रोज बैठ के. फिर वो जब आधार हो जाएगा कि पीस को आप बुलाएंगे और वो कहेगी मैं तो यही हूं, गई नहीं थी, ये अवस्था आनी चाहिए. तब फिर आनंद सौंदर्य प्रकाश शक्ति, नहीं तो वो असंतुलित कर देगा. अगर प्रकाश उतर गया प्रीमेच्योरली तो असंतुलित कर देगा. पहले शांति को. और शिव कहते हैं ये सब तुम्हारे ऊपर है, हम देखते ही नहीं उस दिशा में, खोलते ही नहीं द्वार. रेडी टू डिसेंड, रेडी टू डिसेंड. कोई कर्म करना है, शक्ति शक्ति, वी कैन एस्पायर फॉर शक्ति, पर पीस का बेस, पीस काम इक्वानिमिटी फर्स्ट कंडीशन है. और इसी प्रकार से हम लोग अंत में, ये सब तो भगवान के एस्पेक्ट हैं, उसके आगे मां बी इन माई माइंड एंड इन माई अंडरस्टैंडिंग, मां be in my head and in my thoughts, and we can have an image. Ma hai yaha, ma hai yaha, ma be in my eyes and in my sight. Pehle din baat ho rahi thi na, sansar ko ma ki aankhon se dekhe. Ma be in my ears and in my hearing. To kya hoga, hum jo padhenge sunenge usko samjhenge. Ye to padhenge sunenge sahi, bas buddhi hamari ego ki pakad mein hai. मां बी इन माई स्पीच एंड इन माई वॉइस, मदर बी इन माई हार्ट एंड इन माई हार्ट बीट्स, मां बी इन माई ब्रेथ एंड इन माई लंग्स. एक एक ऑर्गन्स में मां 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 मां. और जब समय मिले मा 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 मा. कार्ड था ना, मैसेज कार्ड 17 नवंबर का, 24 नवंबर, ओम नमो भगवते 24 का, कि उसमें एक शक्ति है. वो साउंड वर्ड में शक्ति है, वो एक आइडिया को वो साउंड वर्ड की बॉडी ने उसके अंदर संग्रहित किया है. तो जब हम उस नाम से या उस मंत्र से जप करते हैं तो उस शक्ति को अपने अंदर चालित करते हैं. ये देखिए, वो कल कोई बता रहे थे कि वैज्ञानिक ये कहते हैं कि पॉइजन लोगे तो मरोगे, है ना, एक ट्रूथ है ये, चाहे तुम उसको फेथ से लो या बिना फेथ के लो. तो ये उसका एक दूसरा ट्रूथ भी है, भगवान का नाम लोगे तो तरोगे. क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो शक्ति है. ओम नमो भगवते, 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 ओम नमो भगवते. कितना सुंदर है ना, एक क्षण में वातावरण कितना अद्भुत हो जाता है. ये तो लिविंग एक्सपीरियंस है, एक क्षण में, कोई समय नहीं लगता. तो कितनी शक्ति है इस नाम में, स्मरण में, सतत स्मरण में. ओम नमो भगवते, एक एक सेल्स में ये छाप पड़ जाए, उनके अंदर से वही स्वर निकले. नींद में कोई उठा के कुछ पूछे, ओम नमो भगवते, माँ भगवती, ये मेडिटेशन है। मेडिटेशन एक कड़ी है जो हमें भगवान से जोड़ती है। बहुत सारी चीजें इसमें, जैसा मैंने कहा कि मैं कुछ सूत्र केवल अभी टच कर रहा हूं। अब अगर इस सूत्र से हम प्रारंभ करें तो ये अपने वंडर्स को डिस्क्लोज करेगा। हर चीज कहनी नहीं चाहिए, अनुभव करनी चाहिए। बहुत सारी चीजें होंगी, वे सारे अनुभव जो हम किताबों में पढ़ते हैं सहज रूप से प्रकट होंगे, क्योंकि वो एक सूत्र है। एक बार जुड़ गया तो जुड़ गया, फिर वो चलता रहता है, चलता रहता है। फिर धीरे धीरे एक बैकग्राउंड स्टेट आ जाती है मेडिटेशन की, जब हम बाहर कुछ भी कर रहे हो लेकिन अंदर में वो अवस्था बनी रहती है। इट डजंट मैटर, वो एक अवस्था है जो बनी रहेगी। प्रारंभ में प्रयास करना पड़ता है, एक विशेष समय निकालना पड़ता है, सुबह की वेला है, संध्या की वेला, जब ट्रांजिशन मोमेंट्स होते हैं उस समय प्रकृति में एक स्टिलनेस होती है, वो अच्छे समय होते हैं। तो 2-3 बार ऐसा समय निकालना चाहिए जब 20 मिनट, ज़्यादा नहीं, 20 मिनट बैठकर एक सहज अवस्था में, ना बहुत ऐसी अवस्था हो कि बहुत नींद आ जाए उसमें बैठ के, इतना लेजीनेस लगे, ना ऐसी हो कि पूरे समय छटपट हो रही है, पाँव बड़े कठोर उसमें है, ऐसा भी नहीं। सिंपल सहज सहज रूप में बैठ के दिन में 3 बार, ना पेट बहुत भरा हो, ये सब तो कॉमन नॉलेज है, और उसके बाद हम बैठ करके ध्यान करें। ये हर किसी को अपना अपना टाइम निकालना है अपने अनुसार, इसमें कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। अगर शाम को 6 बजे जब ट्रांजिशन होता है या सुबह 6 बजे जब फिर से सुबह, तो इट्स वेरी गुड, लेकिन ये नहीं कि कैसे भी जबरदस्ती उठ करके मुंह धो करके बैठ के, वो नहीं होगा। इट शुड बी, एवरीबडी शुड फाइंड हिज ओन टाइम। 3 times a day इज वेरी गुड, बट 2x a day शुड बी प्रैक्टिस्ड। एक बार सुबह कोई समय, एक बार मध्य वेला में, और एक बार रात्रि में भगवान का ध्यान करना। और उस समय यह होना चाहिए, ये मेरा टाइम है भगवान के साथ, और वो टाइम फिक्स कर लें तो बेटर होता है कि कोई और अपॉइंटमेंट सेकेंडरी रखें। इसलिए समय इस प्रकार से रखें। कभी कभी सहायक होता है प्रारंभ में कोई पुस्तक पढ़ना, प्रेयर्स एंड मेडिटेशंस या सावित्री, उसको पढ़ने के बाद ध्यान में उतरना। कभी कभी सहायक होता है श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करना। ये सब बेसिक सिंपल मीन्स है, कॉमन नॉलेज है, कोई नई बात नहीं है। कभी मन बहुत छटपटा रहा है, व्यग्र है, बहुत सारे विचार आ रहे हैं, उत्तेजना है क्योंकि कुछ हुआ है, तो गहरी गहरी सांस लेके हम लोग सांस के साथ माँ माँ शांति पीस पीस, आप देखेंगे 2-4 मिनट बाद फिर से वो सब संयत हो जाएगा, तब ध्यान करिए। क्योंकि एकदम बैठेंगे तो एकदम अंदर रेस्टलेस हो रही है। आंख बंद करके अगर परेशानी होती तो आंख खोल के ध्यान करिए माँ के चित्र पर, बेसिकली इट हेल्प्स। जैसे मैंने उस दिन कहा कि आंख बंद करके कई बार अंदर के भूत पिशाच निकल उठते हैं, आंख खुला रहेगा तो कम से कम माता जी पर ध्यान केंद्रित है। फिर उसी प्रकार से म्यूजिक, मदर्स म्यूजिक, सुनील दास म्यूजिक, ये सब एड माने दी हैं ताकि वो हमारे अंदर में ऊर्जा क्षेत्र को साफ कर देते हैं, शुचिता से भर देते हैं, उन शक्तियों को आसपास नहीं आने देते जो बाधक होती हैं, रेस्टलेसनेस की शक्ति, हर प्रकार के विचार। आप देखेंगे कि म्यूजिक के साथ सुनीलदा और माता जी का म्यूजिक, सुनीलदा का मैं इसलिए कह रहा हूँ माता जी ने स्वयं कहा है उनके बारे में, तो न्यू ईयर म्यूजिक जो यहाँ प्ले करते हैं या सावित्री म्यूजिक, तो वो अपने आप ऐसा क्षेत्र बना देता है कि ध्यान स्वतः हो जाता है। फिर कमरे में अगर कमरा भी ऐसा हो, अब हम लोग क्या करते हैं दिन भर हर तरह की चीज़ें कमरे में, लोग झगड़ा करते हैं ना जाने क्या क्या, तो नेचुरली ऊर्जा बड़ी खराब होती है उस कमरे की। तो इट इज़ वेरी नाइस माँ का चित्र हो, कुछ म्यूजिक हम लोग रोज प्ले करें, ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें थी जिनको बाद में धार्मिकता से जोड़ दिया गया, वो मैकेनिकली ना करके कॉन्शियसली अगर हम करें, अगरबत्ती पुष्प, जिससे वो कमरा भी सुंदर रहे, हमारे रहने का स्थान, सोने का स्थान, तो ध्यान अपने आप होगा, वो शक्तियाँ अपने आप उससे दूर रहेंगी। वे चीज़ें जो हमारे चेतना को उग्र बनाती हैं, उत्तेजित करती हैं, उनसे बचना चाहिए। नशा या ऐसे सीरियल, इस प्रकार के वार्तालाप, डिबेट, डिस्कशन, इवन भगवान के ऊपर डिबेट, ये सब ठीक नहीं है, क्योंकि ये हमारी चेतना को बहुत उत्तेजित करते हैं, इससे दूर रहना चाहिए।
ओवर भी इसमें सहायक हो सकता है क्या? इसे एक फिक्स टाइम कर लिया ध्यान करने का, तो उस वक्त तो धीरे धीरे अपने प्रयास से और माँ की सहायता से चेतना के सूत्र एकत्रित करके और ध्यान कर लेते हैं, लेकिन दिन भर हमारा जो होल्डे चलता है तो उसमें बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जिसमें हमारी 3% कॉन्शियसनेस, 10% कॉन्शियसनेस, 20% कॉन्शियसनेस, 40% कॉन्शियसनेस की यूटिलिटी होती है, रेस्ट ऑफ दी जो कॉन्शियसनेस होती है उसके सूत्र सारे बिखरे हुए रहते हैं।
हाँ, इसीलिए निष्काम कर्म की बात, क्योंकि माता जी कहती हैं अपनी दूसरी प्रार्थना में कहती हैं कि the hours spent in contemplation and in work are complementary to each other. तो work में क्या होता है, वे हमारी प्रकृति के तत्व जो अभी कठोर हैं, जो भगवान की ओर नहीं मुड़े, मुड़ना नहीं चाहते, उन सबको माँ कहती they pass through the crucible. बहुत सारे experiences हैं जो उनको रिजु बनाते हैं, नमनीय बनाते हैं, उनके अंदर एक काइंडनेस लाते हैं, जेंटलनेस लाते हैं, ये सब आवश्यक है। और इसलिए सचेत, कई बार कहा जाता है सचेत होके जीना, सचेत होके जीतने का अर्थ ये नहीं कि तन के जीना, सचेत होके जीने का अर्थ ये कि जब भी प्रगति का कोई अवसर है हमारे प्रकृति का तो हम उसे जाने ना दें। मार्ग में एक फूल दिख गया, एक है अनकॉन्शियसली क्रश करके चले गए, एक ही आप रुक गए, स्कूटर में जा रहे रुक गए, एक क्षण के लिए रुक गए, पुष्प को आपने उठाया रखा या किनारे ले जाके मट्टी में डाल दिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब जगह रोक रोक के, बट एक आया अचानक आपके सामने एक अवसर आया, वहां चुनाव किया। पांडिचेरी में समस्या होती वो ट्रांसफॉर्मेशन ट्री के फ्लावर्स, या कम से कम इतना जरूर किया कि आप उससे बचा के चले गए, तो क्या हुआ, एक अवसर आया जब आपकी चेतना संवेदनशील बनी छोटी से छोटी चीज के प्रति भी। चीटी आ रही है पास में, फट से मार दिया, अब वहां पे एक अवसर आया फिर से हमारी चेतना को संवेदनशील बनाने के लिए। किसी ने कुछ अचानक ऐसा बोल दिया जो हमें चोट पहुंची, एक क्षण को बुरा लगा, अगले क्षण नहीं, ये मेरी प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए, मैंने जो लक्ष्य चुना है उसके अनुसार ये मैच नहीं खाती है, मां मेरे अंदर से इस कांटे को निकाल दो, मां मैं ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करना चाहता हूं, ये तुम्हारे शिशु होने के योग्य नहीं है। ये अंदर में किसी को कुछ कह दिया, उससे उसको बहुत हर्ट हुआ, बार बार सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बोलेगा आप हर बार यही करते हो, सॉरी बोल देते हो फिर वही मिस्टेक करते हो। आप माताजी के सामने जाके, माँ मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी मेरे मुख से निकली वाणी से किसी को चोट पहुंचे। तो जब आप जब ये जीवन में वर्क के थ्रू ये जो 24 घंटे का जो बता रहे चेतना बिखरी होती है, वो अपने आप जागृत होने के कारण वो संयोजित होने लगेगी और वो भी उधर मुड़ने लगी, तब ध्यान ज्यादा डीपर होगा, दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। और अगर नेचर पे काम नहीं होगा तो ध्यान में बाधा होगी, वही चेतना रेस्टलेसनेस बन के नीचे निकलेगी और हमें समझ नहीं आएगा कि हम रेस्टलेस क्यों हो रहे हैं। पर रेस्टलेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जागृत समय पर वो काम नहीं किया। सो एवरी मोमेंट ऑफ ए साधक इज ए मोमेंट वेयर ही कैन आइदर प्रोग्रेस रिमेन स्टैटिक, और अमृतदा तो कहते हैं कैन आइदर प्रोग्रेस और गो डाउन। तो उस सेंस में इट इज नॉट बीइंग तना हुआ बट बीइंग अवेक। वही अब देखिए ये आपको देखना है, अगर आपको उस समय एक नेचुरल ट्यूनिंग है तो यू शुड डू इट, लेकिन अगर आप उस समय से नेचुरल ट्यून नहीं हो जाते, कई लोग बस उस समय पर ध्यान दे रहे हैं, ध्यान भगवान पर देना है। ना सिर्फ वो, माता जी ने 1958 में वो कहती हैं सुप्रामेंटल डिसेंट के बाद कि पहले दर्शन डेज का अर्थ ये होता था कि उस दिन एक विशेष शक्ति नीचे उतरती थी, लेकिन अब वो अप्रत्याशित रूप से किसी भी दिन उतर सकती है और तुम्हें अलर्ट रहना है। तो फिर दर्शन डेज का क्या अर्थ है? दर्शन डेज हम लोग उपयोग करते हैं ताकि वो मैसेज दूर दूर बाहर तक पहुंचे, क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में फिक्सिटी है दर्शन डेज, तो भगवान की चलो कन्वेंशन है, लेकिन दर्शन डेज को ही दर्शन क्यों सीमित रहे? तो कायदे से तो ये होना चाहिए कि हर दिन दर्शन डे हो, और माता जी का ये 80th बर्थडे का मैसेज भी है, 80th बर्थडे पे 21 फरवरी, तो माँ की म्यूजिक के साथ, टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ ए ट्रांजिएंट बॉडी कैन सेटिस्फाई सम फेथफुल फीलिंग्स बट टू सेलिब्रेट द एडवेंट ऑफ ए न्यू वर्ल्ड इज अ रेयर एंड एक्सेप्शनल प्रिविलेज एंड कैन बी डन एट एनी मोमेंट एवरीवेयर. तो मेरा ये मेरा अपना अपनी राय है ऑनेस्टली. मुझे मैं तब जाता हूं जब मुझे एकदम अंदर से वो ललक की नहीं इस तरह के कलेक्टिव मेडिटेशन में, अदरवाइज आई हैव माय ओन टाइमिंग्स फॉर मेडिटेशन एंड आई हैव माय ओन बैकग्राउंड चेतना में जो चलता है. लेकिन ये मान के नहीं आज 10 से 10:30 जाना, ये दिमाग में क्लॉक फिट, आई डोंट डू इट. लेकिन कई लोग करते हैं और शायद अच्छा भी है, आई एम नॉट सेइंग. पर मैं आपको वो बता सकता हूँ जो मेरा सत्य है, नहीं तो वो गलत बात है. मैं एक थ्योरेटिकली आपको चीज बता दो, वो चीज ठीक नहीं है जो प्रैक्टिस करने की चीज है. क्योंकि मैंने ये भी देखा है कई लोग उस पर वो क्लॉक टाइमिंग करके और ठीक 10 बजे बैठे और 10:30. अब माता जी की जब उन्होंने कई चीजें की तो उस समय एक अलग चीज थी. माता जी स्वयं किसी चीज से रिजिड नहीं थी, टाइमिंग्स बदलती गई माता जी, और उस समय बड़े नेचुरल रूप में होता था. लेकिन मानव मन नेचुरल है, हर चीज को फॉर्मलाइज करता है, क्रिस्टलाइज करता है, नहीं तो उसको संतोष नहीं होता है. तो ये मनुष्य की समस्या है. ट्रूथ है उसका, लेकिन उससे बड़ा एक ट्रूथ है स्पॉन्टेनियस जॉयस सरेंडर टू गॉड का. और वो जब प्रकट होता है तो ये ट्रूथ फिर एक सेकेंडरी हो जाता है. हाँ, ये जरूर मानना चाहिए ये सब हमारी सीढ़ी है. पर एक समय आता है जब ये सारे ट्रूथ एक हायर ट्रूथ में मिल जाते हैं, और उस हायर ट्रूथ को ही पकड़ना चाहिए, नहीं तो फिर से एक रिलीजन बन सकता है ना. कि जो लोग 10 से 10:30 ध्यान में नहीं आते, वो माता जी को प्यार नहीं करते, कल को कौन जाने, ये भी तो बोला जा सकता है ना. तो ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं है, अंदर में क्या किसके चल रहा है. माता जी स्वयं इस तरह के क्राइटेरिया नहीं करती थी. दर्शन डेज पर एक बिहारी जी थे, वो नहीं जाते थे. अब ये नहीं कि कोई अच्छी बात है, लेकिन आपको एक उदाहरण दे रहा हूं कि माँ कितनी विशाल और रिजु थी. तो किसी ने कहा कि वो तो आते नहीं आपके दर्शन को, बोले नहीं नहीं उसका आवश्यकता नहीं है, हर समय मैं उसके साथ हूं और वो मेरे साथ है सचेतन रूप में. हाँ ये बिल्कुल, ये तो कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस इज ए ब्यूटिफुल थिंग, ध्यान ही है. अब ध्यान मतलब गहराई में उसके थ्रू आदमी उतर जाता है, एक मोमेंट आता है, हाँ नाम से जुड़ जाता है, सीज कर लेता है. उसी प्रकार से किसी किसी को माँ कहती थी, नहीं तुम जहाँ काम कर रहे हो वहाँ काम करो, आई विल गिव यू दर्शन देयर ओनली. तो ये हम किसी भी आध्यात्मिकता इतना फ्री और फ्लेक्सिबल फील्ड है, जो मैंने माता जी के राइटिंग से समझा है और प्रैक्टिस से समझा है, उसको हमें किसी भी यूनिवर्सल नियम में नहीं बांधना चाहिए. अपने लिए हम नियम बना सकते हैं, हमें हमारे लिए कोई चीज़ सूटेबल होती है हमें वो जरूर करनी चाहिए, वो हमारा व्यक्तिगत नियम है. और रूल बना सकते हैं कि भाई कुछ लोग हैं जो समाधि पर जाते हैं अगरबत्ती जलाते हैं, कुछ को ये लगता है कि शुरबिंदो और मदर तो लिविंग है, हम कैसे अगरबत्ती जलाएं, दोनों भाव में कौन सा उचित है, दोनों अपनी जगह सही है. और वही हम लोग पढ़ रहे थे कि उस फ्रीडम एक प्रिंसिपल है आइडियल कलेक्टिविटी का, डिवाइन कलेक्टिविटी, फ्रीडम इज ए बेसिस. हर व्यक्ति एक चीज करेगा ये आवश्यक नहीं और होना भी नहीं चाहिए, और स्वेच्छा से होनी चाहिए जो भी चीज है. आश्रम में यही है, कोई कंपल्शन नहीं है, जो आते हैं आए, कोई रजिस्टर नहीं है कि कौन कौन आया जी, कोई देखता नहीं है कौन आया नहीं आया. माँ और उसके बीच में है, कहाँ समाधि पर कोई खड़ा हुआ, माथा टेका, किसी ने अगर बत्ती लगाई, कोई पूछ रहा है टी शर्ट कहाँ मिलती है, ये तो हर किसी की अपनी और इसका आनंद है अपना, क्योंकि उसमें आप रियल प्रोग्रेस करते हो, नहीं तो इल्यूजन होता है प्रोग्रेस का, ये भी एक इल्यूजन है. ये हम जा रहे हैं, हम तो माता जी का काम कर रहे हैं बरसों से. माता जी का काम केवल एक भूमि पर नहीं होता है, माता जी का असली काम तो यहां होता है, अंदर में होता है. तो ये भी इल्यूजन ऑफ वर्क. माता जी कहती है इसे बचना चाहिए, प्राण बहुत छलना होता है. माँ ने कहा है प्राण तत्व कई बार एक आभास देता है कि हम भगवान का काम कर रहे हैं, किंतु वो केवल छटपटा रहा है, रेस्टलेस हो रहा है. ये तो अपने आप में एक वो है कि भगवान का काम हम कर रहे हैं. भगवान जो डूअर हैं सारी सृष्टि के, पहला रियलाइजेशन कर्मयोग का, वन ऑफ द फर्स्ट वंस इज ही इज द सोल डूअर. लेकिन वो निष्कर्मण्य वाला रियलाइजेशन नहीं है कि तब मैं कुछ ना करूं, नहीं, वो बड़ा पावरफुल रियलाइजेशन है जब आपको ये लगता है आप नहीं कुछ कर रहे हो, भगवान कर रहे हैं, लेकिन सारे कर्म हो रहे हैं और आप उसका एक माध्यम बन रहे हो, ये भी नहीं ध्यान कि आप माध्यम बन रहे हो, दैट इज अ वेरी पावरफुल स्टेट। उसी चीज को अगर स्थूल बुद्धि पकड़ेगी तो कहेगा भगवान सब कर रहे हैं तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, वो एक गलत धारणा है, पर इट्स अ वेरी पावरफुल स्टेट। माता जी का काम माँ कर रही हैं और हम सब के थ्रू कर रही हैं, और हम सब नहीं रहेंगे तो भी करेंगे। ये चीज आश्रम में सीखते, किसी के आने जाने से कोई काम नहीं रुकता। तो ये सारी चीजें साथ में जुड़ी हुई हैं, सारे एटीट्यूड्स भाव जो हर समय हम लोगों को अपने अंदर डेवलप करने हैं। आज हम लोग यहाँ
ये जप स्मरण प्रार्थना इसके कॉम्बिनेशन है ध्यान के अंदर,
ये सभी चीज ध्यान रूपी एक विशाल उसमें आते हैं। अब ध्यान वैसे कई प्रकार का होता है, एक होता है विटनेसिंग का ध्यान, यानी केवल व्यक्ति अपनी प्रकृति को देखता है। अब समय समय पर यह भी करना चाहिए, लेकिन उसकी समस्या ये होती है कभी कभी वो सूक्ष्म अहंकार में चला जाता है, विटनेस पुरुषा के मेंटल पुरुषा में चला जाता है। तो इसलिए वे चीजें एक थ्योरिटिकली हैं, थ्योरिटिकली नहीं प्रैक्टिकली भी, कि आदमी कभी कभी ऐसा आता है जब केवल एक विटनेस अवस्था में देखना चाहिए। पर आमतौर पर खासकर इंटीग्रल योग में जिस ध्यान की बात महर्षि अरविंद कहते हैं, डायनामिक मेडिटेशन की बात करती है, कि हमें अभिप्सा, हृदय के अंदर से उठती हुई अभिप्सा, हृदय की गहराई में जाने की अभिप्सा, और ये भिप्सा द्वारा हमारी चेतना के पार वे जो हायर नेचर की शक्तियां हैं उसको अपने अंदर उतारना और स्थापित करना, ये आम इस योग में ये ध्यान, क्योंकि रूपांतरण का योग है। तो हृदय के अगर स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, मान लीजिए किसी दिन कि मैं हृदय की गहराई में उतरूं, तो वो इमेज लेकर के गहराई में जाना चाहिए। किसी दिन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है कि पूरे एक एक देह के एक एक गांठ को, मन प्राण को खोल के उनके ओर उद्घाटित कर दूं, तो उस मूवमेंट को फॉलो करना चाहिए। कभी कभी ऊपर से उस शक्ति को अपने अंदर उतारना, शांति, शक्ति, आनंद, तो वो मूवमेंट फॉलो करना चाहिए। स्पॉन्टेनिटी एक बहुत आवश्यक अंग है योग साधना में। बहुत अधिक स्ट्रिक्ट फॉर्मुलेशन, शेरविंद ये लिखते हैं सिंथेसिस के प्रारंभ में, कि योग पद्धतियों में जो स्पेशलाइजेशन हुआ वो बहुत स्ट्रिक्ट, जब कोई चीज हम मेंटली फॉर्मुलेट कर देते हैं तो उसके अंदर से जीवंत सत्ता निकल जाती है। अब सूरदास, मीराबाई, कौन सा ध्यान किया उन्होंने, उन्होंने पाया क्योंकि उनके अंदर वो आग लग गई थी। तो मूल चीज होती है उस आग का लगना। माताजी से तो यहां तक पूछा क्या करना है हमें, माने कहा केवल एक दो चीजें जरूरी है, क्लिंग टू नथिंग एंड थर्स्ट फॉर ट्रूथ। मां कहती अगर तुम्हारे अंदर यह प्यास है तो इवन दी एक्स्ट्रा वेगेंसीज ऑफ एन अमेरिकन यूथ आर ए पाथ। तो ये थर्स्ट जो है, प्यास, तो जिस भी चीज से प्यास हमारे अंदर जगे, भगवान की प्यास, सत्य की प्यास, पूर्णता की प्यास, वो स्वतः ही हमें ध्यान की ओर ले जाएगी। वो अग्नि है जो मार्ग को प्रशस्त करती है। वेदों में कहा गया ना, अग्नि नए सुपथार आए, वो लीड करती है। तो जब अग्नि जल जाती है तो वो हमें अपने आप मार्ग दिखाती है, अंदर का द्वार खोलेगी, ये सब कुछ कर देगी, पर अग्नि जलना आवश्यक है। पर अगर केवल एक टेक्निक रहती है तो सक्सीड नहीं करती। तो अग्नि स्पॉन्टेनिटी, उसमें अग्नि स्वयं बताती है कि इस क्षण ये डायरेक्शन लेना है, रूट। तो वी हैव टू फॉलो द ट्रेल ऑफ द एस्पिरेशन ऑफ द फायर। बहुत सुंदर, आपने तो इतनी अच्छी बात बोल दी। ऐसा है कि चेतना जो चैत्य रूपांतरण है, उसमें चेतना, या हम यूं कहें प्रकृति की सारी गतियां, दे टर्न टुवर्ड्स द राइट एंड द लाइट। अभी वे सारी क्रुकेड हैं। एक ईश उपनिषद में बड़ी सुंदर वो आती है ना, अग्नि को इन्वोक किया जाता है कि मेक द क्रुकेड स्ट्रेट। ये चैत्य रूपांतरण, हमारी प्रकृति अभी क्या बोलेंगे, वक्र चाल चलती है। अब जब चैत्य का स्पर्श आता है तो स्ट्रेट राइट एंड लाइट की ओर ओरिएंट हो जाते हैं, हमारा मन प्राण शरीर सब कुछ। इसको कल हम लोग पढ़ेंगे भी उससे, सावित्री से बहुत। फिर जब खुल गई उसकी ओर तो आध्यात्मिक रूपांतरण स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में अब उच्चतर चेतना की शक्तियां उसके अंदर उतरने लगती हैं, क्योंकि प्रीमेच्योरली भी हो सकता है, चैत्य रूपांतरण के बिना हो सकता है कि ऊपर का लिड खुल जाए, पर वो बहुत अधिक असंतुलन पैदा कर देगा, क्योंकि वो ईगो अशुद्ध आधार में अगर उतरेंगी उच्चतर शक्तियां तो इम्बैलेंस कर देंगी, तोड़ देंगी। तो वो क्या करती हैं, उतर करके पात्र को तैयार करती हैं, और पात्र को तैयार करने का एक जो गति होती है उसमें, वो होती है विशालता लाना और ऋजुता लाना। वो आकर के अंदर में सभी मन प्राण शरीर को विशाल और ऋजु, और यही विशालता बढ़ती बढ़ती फिर विश्व चेतना में प्रवेश कर जाती है। जो आपने बताया ना, उसका अल्टीमेट स्कोप ये होता है। फिर जब इतना विशाल हो जाता है, हो जाती है चेतना, और इसमें कई सारी चीजें मैं आपको केवल संक्षेप में बता रहा हूं, और उसके अंदर इतनी ऋजुता आ जाती है कि डिवाइन विल के अनुसार केवल चले, ऋजुता ऐसी यानी कोई रिजिडिटी नहीं है, कोई मेंटल सिस्टम फॉर्मूला रूल्स इसके अधीन नहीं है व्यक्ति, वो सब आवश्यक थे प्रारंभ में, पर अब केवल एक ही रूल है, एक ही विधान है, भागवत संकल्प। तब सुप्रमेंटलाइजेशन प्रोसेस शुरू होती है, एक तैयार पात्र में अतिमानसिक चेतना उतरकर हर चीज को, ये मानव जीवन में प्रकृति की जितनी भी गतिविधियां हैं वो एक शैडो है, उसका ट्रुथ जो है वहां पर है, तो वो सत्य उतरकर उस शैडो को अपने असली रूप में चेंज करने लगता है, और वो चेंज कोशिका कोशिका तक जाएगा। तो पहले में वो चेंज के लिए तैयार है, तत्पर है, दूसरे में चेंज की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है लेकिन एक सीमा तक जाएगी, और तीसरे में वो परिपूर्ति की ओर जाएगी। एक और इसका एग्जाम्पल ले लें कि भगवान को आना है घर पे, तो नॉर्मली घर ऐसे ऐसा अचानक किसी ने कहा भगवान को आना है, तो आप पहली चीज क्या करेंगे, अरे अरे भगवान है, मां आ रही है, चलो चलो झाड़ू लगाओ, ये करो, साफ करो, सुंदर बनाओ, ये चैत्य रूपांतरण है। फिर भगवान आएंगे, उसके पहले उनके दूत आएंगे, वरुण आएंगे, अग्नि आएगी, मित्र आएंगे, शांति आएगी, प्रकाश आएगा। देखें जरा, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आ रहे हैं ये घर, तो प्रकाश आएगा, बोलेगा देखो उस कोने को तुमने देखा नहीं, तुमने ठीक किया था, लेकिन देखो वहां पे गंदगी साफ करो, जाला देखो वहां, तो प्रकाश आके प्रकाशित करेगा सब कुछ, शांति आएगी। देखिए उस कोने में एक फॉर्मेशन है, झगड़ा अभी भी तुम्हारे अंदर, साफ करेगी उस स्थान को, शांति स्थापित हो जाएगी। फिर अलग अलग भिन्न भिन्न भगवान के इस प्रकार से हायर कॉन्शियसनेस नॉलेज आएगी, इंट्यूशन में हम अवेक होंगे, विशालता की ओर ले जाएगी। वो कहेगा नहीं नहीं ये ऐसे कमरा नहीं, इसमें ऐसे करो, ये पहले वॉल्स को ट्रांसपेरेंट करो, फिर ये वॉल्स हटाओ, फिर इसको ऐसे फैलाओ, आपका पूरा घर ऐसा लगेगा कि एकदम चेंज हो गया। फिर भगवान आएंगे और हर एक कोने में स्थापित हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा सुप्रामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। वो था प्रिपरेशन फॉर द थर्ड वन, क्योंकि सीमित चेतना रहेगी तो रूपांतरण, अति मानसिक रूपांतरण संभव नहीं है, और अचानक चेतना विस्तृत हो नहीं सकती, इसलिए बीच में आध्यात्मिक रूपांतरण और विश्व चेतना इसलिए आवश्यक है। सीमित चेतना में वो उतर ही नहीं सकता, इट्स लाइक एक्सपेक्टिंग हाथी क्या एक नीडल वो सुई की आंख से पास हो जाएगा, अति मानसिक चेतना इतनी विशाल है। इसीलिए ये सब जो श्री अरविंद हमारी रिजिडिटी मानसिकताओं की तोड़ते हैं, हम लोग को लगता है ऐसी बातें क्यों लिख रहे हैं, हम लोग को अपने कंफर्ट जोन में रहने देते, पर वो जानबूझ के प्रेम करते हैं इसलिए लिख रहे हैं कि तुम लोग इससे निकलो, विशाल बनो, विशाल बनो, ताकि जब मैं आऊं तो घर खुला हो सब तरफ से, नहीं तो तुम लोग दुर्योधन की तरह मुझे बांधोगे रस्सी में। दिस इज द सीक्रेट। श्री अरविंद की कई जगह ऐसा होता है ना, हमें विशाल बनाते हैं, क्यों विशाल बना रहे हैं, क्योंकि वो उनकी वाणी ही हमें आध्यात्मिक रूपांतरण की ओर ले जाती है, जैसे माँ की वाणी हमें चैत्य रूपांतरण की ओर ले जाती है ऑटोमेटिकली। आप देखेंगे कि अंदर के पार्ट्स ओरिएंट होने लगते हैं टुवर्ड्स द राइट एंड द लाइट, श्री अरविंद की वाणी ऑटोमेटिकली हमको विशाल, ऋजु, ये सब बनाने लगती है, और फिर हम तैयार होते हैं फॉर द फाइनल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रूथ. आज हम लोग यहीं रुकेंगे.